آپ کا شکریہ بائی بورڈرز. جب کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو آئے ہم دعا کرتے ہیں. میں سوچتا ہوں اگر آج رات کسی کی کوئی درخواست ہے تو وہ اپنا ہاتھ بلند کر کے کہے خداوند یہ میں ہوں, اب آئیں اپنے سروں کو جھکائیں. ہمارے آسمانی باپ, ہم نے اس گیت کو سنا ہے, خداوند میں ایمان رکھتا ہوں. ہم ان وقتوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں میں نے بہت ساری زبانوں میں اسے سنا ہے. خداوند میں ایمان رکھتا ہوں, فقط ایمان رکھیں. اور اے باپ ہم دعا کرتے ہیں کہ آج رات کے ہمارے لیے ایک گیت سے بڑھ کر ہو اور یہ ایک حقیقت بن جائے, انہیں پائے کہ آج رات ہمارا بھروسہ تجھ پر اور بڑھ جائے. اور اب ہم اس چھوٹے چرچ اور اس کے پاسٹر کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمارا بھائی فولر جو کہ تیرا خادم ہے, ایک ایسا بھائی ہے جس پر ہمیں بھروسہ ہے, اور ہم اس کے خاندان, یہاں کے کارکنوں, ڈیکنز, ٹرسٹیز اور باقی تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ان مقدس دروازوں سے داخل ہوتے ہیں. خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جگہ ہمیشہ یسوع مسیح کے لیے ایک روشنی کا مینار بنی رہے. ان تمام خدام بھائیوں کو برکت دے جو آج رات یہاں موجود ہیں, جو ہمارے ساتھ راستے میں آتے جاتے رہتے ہیں. اے باپ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ان کو کثرت سے برکت دے, اور آج رات ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اپنی حضوری کا ایک اور نزول ہم پر نازل فرما. خداوند ہم ضرورت مند ہیں, ہمیں تیری ضرورت ہے. خداوند ہمیں مسلسل تیری ضرورت ہے کیونکہ ہم یہاں میدان جنگ میں ہیں جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں. اور اے باپ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اپنی حضوری کے ذریعے مسلسل ہمیں حوصلہ دیتے رہنا. یہ جان کر ہمیں بڑا سکون ملتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے. خداوند اپنی موجودگی کو ظاہر کر, اس سے ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت ملتی ہے. بیمار اور مصیبت زدہ لوگوں کو شفا عطا کر, گمراہ لوگوں کو نجات دے, مایوس لوگوں کی حوصلہ افزائی کر. سارا جلال تجھے ملے جب بھی ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں. آمین. آپ بیٹھ سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ داؤد نے کہا تھا. میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلے. کچھ دیر پہلے بلی نے کہا, ڈیڈی کیا آپ تھکتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا, ہاں میں اپنی پوری زندگی تھکا ہی رہا ہوں, اتنا تھکا ہوں کہ اب مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے. میں نے سوچنا شروع کیا تھا, خیر میں اب بہت بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں, مجھے تھوڑا آرام کر لینا چاہیے. پھر کوئی آدمی آیا تقریباً 80 یا 90 سال کا تھا, جو پورے ملک میں دھوم مچا رہا تھا. میری عمر سے تقریباً دگنا تھا. آپ جانتے ہیں میں نے سوچا, میرے خدایا میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں. لوکل ٹیبر نکل میں کڈ نامی ایک پرانا بزرگ جوڑا ہے جو اوہایو سے وہاں آتا ہے. اب وہ دونوں شاید 85 یا 88 سال کی عمر کے ہیں, اور وہ اتنے بزرگ ہیں کہ وہ زیادہ چرچز میں منادی کے لیے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کی آواز کافی نہیں ہے. لیکن آپ جانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, تقریباً ہر ٹیپ اس بزرگ عورت نے اپنے پیسے جمع کیے اور ایک ٹیپ ریکارڈر خریدا, اور بس وہ ٹیپ حاصل کرتی رہتی ہے, اور میں اسے ٹیپیں بیچتا رہتا ہوں, اور وہ ان ٹیپوں کو لے کر اسپتالوں میں جاتی ہے اور ہر اس جگہ جاتی ہے جہاں وہ ٹیپ ریکارڈر چلا سکتی ہے. وہ اور اس کا بزرگ شوہر بس ٹیپیں چلاتے رہتے ہیں. اور اب میں اسے دعائیں اور رومالوں کا ایک بڑا رول بھیجوں گا جس پر میں نے دعا کی ہے, اور اکثر وہ کہتی ہیں بھائی ولی میرے پاس سے دعائیں اور رومال پھر سے ختم ہو گئے ہیں. اور جب وہ چرچ آتے ہیں تو میں انہیں دیکھتا ہوں, سفید بال ہیں, چھوٹی شال اوڑی ہوتی ہے, اور وہ ایک چھوٹا سا نحیف آدمی ہے. تقریباً 4 یا 5 سال پہلے جب میں وہاں تھا اوہایو میں, اس جگہ پر جہاں وہ ہر سال کنونشن کرتے ہیں, اس جگہ کا کیا نام ہے, وہ اسے شٹاکوا کہتے ہیں لیکن میں اب بھول گیا ہوں. یہ وہاں کے میدانوں میں ہے لیکن اس شہر کا نام کیا ہے میرے ذہن میں وہ نہیں آ رہا. اب یہی ہے, اب بالکل قریب ہے. کسی نے کہا ہم میامی سے سیدھا جاتے ہیں اور یہ فرینکلن کے قریب ہی ہے. جی ہاں یہ درست ہے, ٹھیک وہاں میرے خیال سے یہ فرینکلن کے درمیان ہے. مڈل ٹون یہی ہے, یہ درست ہے, بس یہ بالکل مڈل ٹون ہی ہے. دریا کے کنارے شٹاکوا کے میدان میں ہے, وہاں وہ بڑا باسکٹ بال کھیلوں کا مرکز ہے. اور یہ بھائی ہو, میں انہیں کئی سالوں سے جانتا ہوں, اور یہ بیچارے بوڑھے بھائی کڈ ہیں. ہو مجھے لگتا ہے کہ جب انہیں اسپتال لے جایا گیا تھا تو ان کی عمر تقریباً 80 سال تھی, اور ڈاکٹروں کو پتا چلا کہ ان کے پروسٹیٹ میں کینسر ہو چکا ہے اور وہ بڑھ گیا ہے اور اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. خیر انہوں نے کہا کہ ان کا آپریشن کرنا پڑے گا. بس جب انہوں نے ان کا آپریشن شروع کرنے کے لیے جسم کھولا تو کہا انہیں اب آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں, इनकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, समझे। उन्होंने कहा अब इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। खैर वो उस बेचारे बुजुर्ग को घर ले आए, और वैसे भी 80 साल आदमी का ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल था, और उसका वजन तकरीबन शायद मेरा ख्याल है 100 पाउंड से भी कम हो गया था। बस मिसिस किड ने मुझे कॉल की और मैं अभी कहीं से घर आया ही था। भाई किड करीबुल मर्ग थे और कहा भाई ब्रहनम वो आपको देखना चाहते हैं पहले आपसे, इससे पहले कि वो रुखसत हों। खैर बिली और मैं वापस मुड़ गए। हमें वो पैगाम तकरीबन रात 10 बजे के करीब मिला था। बस हमने अगली सुबह तकरीबन 4 बजे सफर का आगाज किया, क्योंकि अगले दिन दोपहर में मुझे वहाँ से दोबारा कहीं और जाना था, और वहाँ पहुँचने की जल्दी में हमने तकरीबन अपनी गाड़ी के टायर ही फाड़ लिए थे। वो बेचारा बूढ़ा आदमी था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने उसे उठाकर बिठा दिया था, और उसने कंधों पर एक छोटी सी शॉल ली हुई थी और वहाँ एक बुजुर्ग की तरफ बैठा हुआ था। इस चीज ने मुझे थोड़ा सा हिलाया, और जब मैं उसे देखने गया तो उसने मेरी तरफ देखा। वहाँ एक और बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो उसके चर्च के मेंबरों में से एक थी, क्योंकि उसने पहाड़ों में कैंटकी के कोले के इलाके में मुनादी की थी, जहाँ वो रोजाना 15 सेंट के लिए कपड़े धोती थी ताकि अपने शोहर को अंजील की मुनादी के लिए मैदानों में बेच सके। ये मेरी पैदाइश से तकरीबन 10 साल पहले की बात थी, और वो पैगाम की मुनादी कर रहा था, और उसने उस तरफ देखा और उसे दादी कहकर पुकारा, जबकि वो खुद 80 साल का था, और वो औरत 90 बरस से भी ज्यादा उम्र की थी। और फिर उसने कहा दादी आप तो बर्फ की तरह सफेद नजर आ रही हैं। मैंने सोचा ये वो अंदाज है जिससे एक खादम अपनी जमात के अराकीन को देखता है, हालांकि वो लेटा हुआ बैठा हुआ मर रहा था। दादी आप तो बर्फ की तरह सफेद नजर आ रही हैं। जी हाँ। और उसने मुड़कर देखा और कहा भाई ब्रहनम। मैंने कहा जी हाँ भाई किड। उसने कहा भाई मेरा ख्याल है ज्यादा देर नहीं होगी तो वो मेरा रथ नीचे भेज देगा। कहा मैं आज सुबह रवाना होने वाला हूँ। और मैंने कहा भाई किड ये शानदार है। मैंने कहा ऐसा ही एहसास होना चाहिए। और पुरानी बुजुर्ग बहन किड को कितने यहाँ जानते हैं? जी हाँ मैं जानता हूँ, वो बहुत से उन्हें जानते हैं। तो उसने कहा लेकिन भाई विली क्या आपको नहीं लगता खुदा अभी पापा को शिफा दे सकता है? कहा यकीनन वो ऐसा कर सकता है। और भाई ने कहा तो फिर खुदा को जलाल मिले। उसने कहा अगर वो मुझे शिफा देता है, कहा तो मैं दोबारा काम करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोचा 80 साल की उम्र में मैं घुटने टेकने लगा और रोया नाजिल हुई। ये बात थी। दो दिन के बाद वो उसे वापस अस्पताल लेकर गए। उसके बेटे शहर की पुलिस फोर्स में थे। वो इस बात को समझ ना सके। उसे दोबारा डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने हैरानी से अपना सर खुजाते हुए कहा भाई अब मुझे उस बीमारी का कोई निशान नजर नहीं आ रहा, अब मुझे ये सब कुछ बताओ। और फिर खुशी से उसने अस्पताल सर पर उठा लिया, फौरन अपना टेप रिकॉर्डर लेकर दोबारा वहाँ आ गया और पैगाम चलाया। और वो वहाँ रहते हैं, बिल्कुल वहाँ शटाकुआ के करीब रहते हैं। अब मैं जल्द ही 7 मोरों को शुरू करूंगा, जैसे हमने 7 कलीसिय जमानों को किया था। कल रात बहन ने मुझे कॉल की और कहा प्यारे भाई अगर मेरे पास पैसे होते, उसने कहा तो मैं जरूर वहाँ आना चाहूंगी। मैंने कहा मिसेस किड आप इसे छोड़ें, आपका कमरा आपका इंतजार कर रहा है, आप और पापा यहाँ आ जाएं। उसने कहा आपके छोटे दिल को खुदा बरकत दे, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप जानते हैं, क्योंकि वो मेरी हौसला अफजाई करते हैं। 85 या 86 साल की उम्र में भी वो अब तक चलते जा रही हैं। फिर मैं यहाँ 53 साल का होकर शिकायत कर रहा हूँ। बस ये चीज आपको हिम्मत पकड़ने पर मजबूर कर देती है। खैर हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, और बात करने के लिए इतना प्यारा ग्रुप भी मौजूद है, और हम आधी रात तक यहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन अब आपको सुबह संडे स्कूल भी जाना है, अब पक्के हो जाएं, आपको जाना है। और याद रखें मैंने हमेशा कहा है अपने बच्चों को अकेला संडे स्कूल भेज देना बिल्कुल एक गुनाह है, ऐसा हरगिज ना करें, ये दुरुस्त नहीं है। उन्हें हमेशा खुद साथ लेकर जाएं, समझे, हमेशा उनके साथ जाएं। वो और बस अब ये सुबह के वक्त होता है, और अब अगर आपको सुनने के लिए या हमारे साथ दुआ करने के लिए और मजीद दीगर काम करने के लिए काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, अगर आपको काम से छुट्टी लेनी पड़े तो इसमें कोई बात नहीं है, बस जाएं और काम से छुट्टी लें, लेकिन चर्च से तभी छुट्टी ना करें, आप चर्च से छुट्टी ना करें। मैं इतनी देर नहीं लगाऊंगा कि आपको चर्च से छुट्टी करनी पड़े, लेकिन अगर आप कभी कभार काम से छुट्टी ले लें तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब क्योंकि काम आपकी रोजाना की रोटी है और खुदावन ने वादा किया है कि वो ये फराम करेगा, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आप चर्च में आने को यकीनी बनाएं। आप समझे, मेरा ख्याल है कल सुबह मैं यहाँ शहर में किसी और अच्छे भाई के साथ रहूँगा, लेकिन इस वक्त मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है उसे अपोस्टोलिक चर्च कहते हैं या उसे अपोस्टोलिक कलीसिया कहते हैं। ये एक अपोस्टोलिक चर्च है, शायद मैं उस भाई को जानता हूँ। उसका नाम यहाँ कागज पर नहीं लिखा है, लेकिन इस वक्त मुझे मालूम नहीं कि वो भाई कौन है। फिर कल रात वहाँ, माफी चाहता हूँ, भाई मेकियास, ओ मेकियास, ओ ये मैक्सिकन चर्च है, क्या ये दुरुस्त है? ओ क्या ये वही है जिसने भाई गार्सिया की जगह ली थी जब वो यहाँ से चले गए थे? बहुत अच्छा, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। कहा, मुझे कुछ अरसा पहले उनकी बेटी की तरफ से एक खत मिला था जो वहाँ भाई गार्सिया जो कैलिफोर्निया में है और अभी भी कायम है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जब मैं सान होजे में था, मेरा ख्याल है भाई बॉर्डर्स के साथ, मैंने भाई और बहन गार्सिया को भी देखा था, वो बहुत अच्छे हैं। मैं कभी नहीं भूलूंगा वो रातें जो मैंने उस छोटे से मैक्सिकन चर्च में गुजारी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ग्लोरिया डियोस का इतना जिक्र नहीं सुना था, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, ग्लोरिया डियोस। मेरे खुदाया भाई विलियम्स, शुक्रिया, ये अच्छा है। इस चर्च में सुबह के वक्त 1500 नशिस्तें होंगी, कहें हर एक यहाँ आए। अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं, जरा एक मिनट ठहरे, मुझे इस बात में एहतियात करनी चाहिए, मैंने कुछ गलत कह दिया है। नहीं, पूरी संजीदगी के साथ आपको अपनी जिम्मेदारी की जगह पर होना चाहिए, समझे, मत करें। खैर, ये बिल्कुल ठीक है। और आज मुझे मालूम हुआ, मैंने एक टेंट को देखा, मैं यहाँ सोलवी और हिंसा के इलाके में था, या जब मैं तकरीबन 35 साल पहले यहाँ एरिजोना में था, तो ये एक पुरानी कच्ची सड़क थी। मैं वहाँ गया जहाँ वो लोग रहते थे और वो जगह सोलवी और हिंसा थी। मैं वहाँ कुछ लोगों के साथ रहता था, फ्रांसिस्को, और अब आप इस जगह को कभी नहीं पहचान पाएंगे, हत्ता कि उसका नाम भी बदल गया है। मेरा ख्याल है अब उसे बुक आई रोड कहते हैं। और हो, चीजें किस कदर बदल जाती हैं, लेकिन खुदा नहीं बदलता। बस मैं वहाँ गया और देखा कि एक भाई ने टेंट मीटिंग का एहतमाम किया हुआ था। वहाँ एक भाई था जिसने टेंट लगाया हुआ था, मैं उसे देखने के लिए उधर गया, लेकिन मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा ताकि उसे बता सकूं कि हम यहाँ उसके मुकाबले के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ तो लोग ही बहुत ज्यादा हैं। मुझे जैक शोलर याद है, ये बात आप मेथोडिस्ट लोगों के लिए अच्छी होगी। एक बार जब मैं यहाँ आया तो मैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन में था, तब जैक वहाँ हाई स्कूल में था। मैंने उसे कॉल की और मैंने कहा, भाई जैक, उसने कहा, जी हाँ, क्या ये भाई ब्रैनम है? मैंने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ। और उसने कहा, नहीं, उसने कहा, नहीं, मैं बस बहुत देर तक रुका रहा और तुम्हारा वक्त भी जाया किया। और मैंने कहा, ओ मुझे अफसोस है भाई जैक, मैंने कहा, मेरा ये इरादा नहीं था। ओ, उसने कहा, कोई बात नहीं भाई ब्रैनम, कहा, वो लोग ही चाहते थे कि मैं वहाँ ठहरूं। मैंने कहा, ओ मेरा ग्रुप वहाँ आपको परेशान नहीं करेगा जैक, मैंने कहा, क्योंकि मेरे ज्यादातर लोग पेंटिकोस्टल हैं। उसने कहा, यकीनन मेरे भी ऐसे ही हैं। मैंने कहा, जी हाँ, देखें, उसने कहा, यकीनन, उसने कहा, मैं पेंटिकोस्टल हूँ। मैंने कहा, अब बेहतर है कि आप बॉब को ये ना बताएं, ये उसका वालिद है, आप जानते हैं, और वो भी मेथोडिस्ट है, बिल्कुल पक्का और मजबूत मेथोडिस्ट है, आप जानते हैं। खैर, उसने कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप नहीं जानते हैं कि पेंटिकोस्टल क्या होता है? मैंने कहा, मुझे लगता है ऐसा ही है। कहा, ये ऑर्थोडॉक्स मेथोडिस्ट हैं, ऑर्थोडॉक्स मेथोडिस्ट हैं, ये तकरीबन ठीक बात है, ये सच है। अगर मेथोडिस्ट चर्च अपने पैगाम पर कायम रहता तो ये सीधा पेंटिकोस्ट तक पहुंच जाता और हकीकी कलीसिया वहां पहुंच गई थी। नहीं भाई, अब आपकी तंजीम की कोई तोहिन नहीं है, समझे, क्योंकि पेंटिकोस्ट एक तंजीम नहीं है। लोगों ने उसे तंजीम बनाने की कोशिश की, लेकिन वो यकीनन इसमें नाकाम रहे, समझे, ये एक तजुर्बा है। जी हाँ, पेंटिकोस्ट कैथलिक या यहूदियों या किसी और के लिए भी है, पेंटिकोस्ट एक तजर्बा है, कोई तंजीम नहीं। और अब अगर सब लोगों ने अपनी बाइबल खोल ली है या बंद है, तो क्या आप मेरे साथ चंद आयात पढ़ना पसंद करेंगे? मुझे खुदा का कलाम पढ़ना पसंद है, क्या आपको नहीं? क्योंकि देखें, जो कुछ मैं कहूँगा वो नाकाम हो सकता है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, लेकिन जो कुछ वो कहता है वो नाकाम नहीं हो सकता। देखें, आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरा कलाम हरगिज ना टलेगा। ओ, क्या ये शानदार नहीं है? उसकी बातें कभी भी नाकाम नहीं होंगी। ये कितनी शानदार बात है, उसका कलाम कभी नाकाम नहीं होगा। अब आए, आज रात पढ़ते हैं ताकि थोड़ा सा सियाको सबक ले सके। अगर खुदावन ने चाहा तो मैं इसे अपने मौजू के लिए लूंगा। ये अमोस की किताब में है, ये अमोस की नबुवत है, और वो तकरीबन 700 और मेरा ख्याल है तकरीबन 787 साल पहले आया था। ये मसीह की आमद से पहले की बात है। आए अब अमोस के तीसरे बाब की तरफ चलते हैं। अमोस के वसीले ये खुदावंत का कलाम है और मैं इस आदमी को पसंद करता हूँ। ये अंबिया असगर में शुमार होता है, लेकिन बेशक उसके पास खुदावंत का कलाम मौजूद था। इस कलाम को सुनो जो खुदावंत ने तुम्हारी बाबत फरमाया है, ए बनी इसराइल, उस सारे खानदान के खिलाफ फरमाया है जिसको मैं मुल्के मिस्र से निकाल लाया। दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगजीदा किया है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी सारी बदकरदारी की सजा दूंगा। अगर दो शख्स वहाँ मुत्तफिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? क्या शेर जंगल में गरजेगा जबकि उसको शिकार ना मिला हो? और अगर जवान शेर ने कुछ ना पकड़ा हो तो क्या वो गार में से अपनी आवाज को बुलंद करेगा? क्या कोई चिड़िया जमीन पर दाम में फंस सकती है जबकि उसके लिए दाम ही ना बचाया गया हो? क्या फंदा जब तक के कुछ ना कुछ उसमें फंसा ना हो जमीन पर से उछलेगा? क्या ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे, या कोई बला शहर पर आए और खुदावन ने उसे ना भेजा हो? यकीनन खुदावन कुछ भी नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आशकारा ना कर दे। शेर बब्बर गर्जा है, कौन ना डरेगा? खुदावन खुदा ने फरमाया है, कौन नबुवत ना करेगा? खुदावन अपनी बरकत इस कलाम पर नाजिल फरमाए। उसकी छोटी आंखें यकीनन बंद हो गई होंगी क्योंकि उस तपती सुबह में सूरज चमक रहा था, और वो अपने सफेद बालों और दाढ़ी के साथ सामरिया के शिमाल में पहाड़ी की चोटी पर चढ़ रहा था, और उसने शहर पर निगाह की। उसके कपड़े नॉर्मल थे और उसके पांव पर मिट्टी पड़ी हुई थी। वो देखने में ज्यादा दिलकश नहीं था, लेकिन लोगों के लिए उसके पास खुदावंद यूं फरमाता है था। आज ये हमारी जदीद अंजीली बशारत से कितना मुख्तलिफ मंजर था। हमारे पास उससे कितना मुख्तलिफ सेटअप है। ये छोटा साथी कोई और नहीं बल्कि अमोस था, जो कि खुदावंत का एक सच्चा नबी था, और उसके पास उस गुनाहगार नस्ल के लिए खुदावंत का कलाम था। इस ना डर छोटे आदमी ने यरोबाम दोम के दिनों में नबुवत की। यरोबाम होशियार, बहुत ज्यादा चालाक और अकलमंद आदमी था, लेकिन वो एक बुत परस्त था, और यरोबाम ने अपनी सल्तनत को अरूज पर पहुंचा दिया था, लेकिन वो बुत परस्ती में था। उसने ये गलत तरीके से किया था, लेकिन बादशाही यरोबाम के मुताबिक तरक्की कर चुकी थी, और आम तौर पर खुशहाली गुनाह का सबब बनती है। बहुत से लोग खुशहाली को नेमत के तौर पर देखते हैं। अगर हम इसे सही तरीके से संभाल पाते तो ऐसा ही होता, लेकिन ये आम तौर पर गुनाह और खुदा की बेहुर्मती का बाइस बनती है। उसके दौर में सल्तनत अरूज पर थी और लोग खुशहाल थे। उसने अपने गिर्दोनवा की तमाम कौमों के साथ इतिहाद कायम किया हुआ था।
How Israel had drifted off into a terrible sin.
और कैसे इसराइल गुनाह में डूबता चला गया और खुदा से दूर हो गया। वो उसके अहकाम और उसकी तालीमात से दूर हो गए थे और पूरी तरह अपनी ही जिद और सरकशी में भटक गए थे। औरतें अपनी उम्दा बेहुदा लबास में सड़कों पर चल रही थी। मर्द जुए और शराब नोशी में मसरूफ थे, जिन्हें हम आज रोड हाउसेस कहते हैं, जो तफरी के मकामात हैं, वो शहर में खुलेआम थे। मिनिस्ट्री ने गुनाह को नजरअंदाज कर दिया था और उसे खुलेआम छोड़ दिया था। ये खूबसूरत जगह थी जो सियाहों के लिए एक बड़ा मरकज थी और हर तरह से खुली हुई थी। गुनाह को मस्जिद पुलपट से डांटा नहीं जा रहा था, वो खुले आम घूम रहा था। और जब ये नबूवत सामने आई तो ऐसा लगा कि ये पूरी नहीं होगी, ये आखिरी बात होगी जो कभी पूरी हो सकती है। उस नबी ने जो कुछ उनसे कहा था उसके मुताबिक ये आखिरी बात होगी जो उनके साथ हो सकती है, जिस तरह से उसने उस नस्ल पर लानत की थी। लेकिन तो भी 50 सालों के अंदर अंदर उनकी बादशाही जमीन से मुकम्मल तौर पर मिटा दी गई। खुदा अपने कलाम से बोलता है और खुदा का कलाम एक बीज की मानिद है। और जब इसे बोया गया, जब वो नबी खुदावंद का कलाम लेकर आया और ये अल्फाज कहे, तो उन्हें पूरा होना ही था अगर वो वाकई खुदा का कलाम था। जब खुदावंद का कलाम मसा किया जाता है तो ये खुदावंद का कलाम ही होता है। ये अपने मौसम में अपनी जगह लेने का पाबंद होता है। हम हजारों साल बाद भी उसे आज अपनी जगह लेते हुए देख सकते हैं। इसे जरूर ही अपनी जगह लेनी है क्योंकि ये खुदावंद का कलाम है और ये फना नहीं हो सकता। गुज़िश्ता रोज कोई मुझसे बात कर रहा था और कहा, पैदाइश गलत है और तखलीक के 6 दिन हैं जिनका उसने जिक्र किया है। मैंने कहा, पैदाइश 1 और पैदाइश 2 बाप, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पैदाइश का पहला बाप फरमाता है, इब्तदा में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। मुद्दत, उसने ये कैसे किया और उसने ये कब किया, ये सब उसी पर मुनसर है। जी हाँ, लिखा है, जमीन वैरान और सुनसान थी। फिर हम तखलीक का यहीं से आगाज करते हैं, लेकिन इब्तदा में कितनी देर लगी हम ये नहीं जानते हैं। वो तमाम बीज जो उसने वहाँ रखे हुए थे, जैसे ही पानी अलग हो गया तो जमीन पर दोबारा जिंदगी लौट आई, जमीन को भर दिया गया। और जब खुदा के कलाम को बोया जाता है तो फिर कोई चीज उसे रोक नहीं सकती है। और ये बेखौफ छोटा नबी कहीं से अचानक आ गया। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि वो एक चरवाहा था। हमें नहीं मालूम उसका बाप कौन था, हमें नहीं मालूम उसकी माँ कौन थी, हम नहीं जानते उसकी औलाद कहाँ है, उसके मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं है। आम तौर पर खुदा की तरफ से भेजे हुए बंदे ऐसे ही मंजर पर आते हैं, वो कहीं से आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। हमारे पास इसके मुतालिक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि क्या हुआ था। ये अजीम आदमी यूरबाम, जो जहनी तौर पर बड़ा ताकतवर शख्स था, उसने कौम को खुशहाली में रखा हुआ था मगर गुनाह में था। मैं सोचता हूँ क्या हम आज रात इस बात को किसी हद तक अपने मुल्क पर लागू नहीं कर सकते हैं। हमारी अपनी कौम देखें, ये गुनाह में है तो भी ये खुशहाल है। मैंने सुना है हमें फौरी तौर पर टैक्स में कमी मिलने वाली है। बेशक कोई भी लाइंस के दरमियान पढ़ सकता है, जबकि इंतखाबात करीब हैं और वगैरह वगैरह, ये तमाम काम हो रही हैं। इसराइल में मुनादों, पादरियों और हुकूमत ने खुदा के कलाम को पीछे छोड़ दिया था और समझौता कर लिया था, और इसीलिए मुल्क इस हालत में था। हालांकि उनके पास काफी पादरी मौजूद थे और उनके पास उतने ही वाज थे जितने पहले थे, लेकिन उन्होंने खुदा का कलाम छोड़ दिया था। उससे दूर हो गए थे और हमेशा उसी वक्त खुदा कहीं से किसी को भेजता है ताकि उसे दोबारा उसकी राह में लाया जाए। कोई ना डर शख्स खुदावंद के कलाम के साथ उठेगा और लोगों को दोबारा कलाम की तरफ जोड़ कर लाएगा। मैं यहाँ कुछ गौर कर रहा था, मैंने इसे यहाँ लिखा हुआ है जिसका जिक्र मैं दोबारा से करना चाहता हूँ। ये दूसरे बाब की चौथी आयत है, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। इस छोटे आदमी को सुने जो ये कह रहा है, खुदावंद यूं फरमाता है, यहूदा के इन तीन गुनाहों की वजह से, और चार हैं, मैं इसकी सजा को नहीं टालूंगा क्योंकि इन्होंने खुदावंद की शरीयत को रद्द किया और उसके हकाम की पैरवी ना की, और उनके झूठे माबूदों ने जिनकी पैरवी उनके बाप दादा ने की उनको गुमराह किया है। देखें उसका पैगाम कहाँ था, उसे दोबारा उसी मकाम पर रखने का मतलब ये था कि वो खुदा के कलाम से भटक चुके थे। किसी भी बाइबल पढ़ने वाले के लिए ये बात साबित करती है कि वो एक सच्चा नबी था। वो उन्हें वापस कलाम की तरफ लाया जहाँ से वो हट चुके थे। हो सकता है उनके गिरजाघर खुशहाल हों, हो सकता है उनके पास शानदार इमारतें हों, हो सकता है उनका शहर फिनिक्स से ज्यादा शानदार हो। वो सामरिया में थे जबकि हम सब जानते हैं वो एक अजीम सियाती मरकज था। वो अब तक एक खूबसूरत जगह है, लेकिन फिर भी वो खुदा से दूर हो गए थे और खुदा ने उनके पास इस पैगंबर को भेजा। खुदा की जानिब से क्या ही तमी का पैगाम था, और ये छोटा नबी पैगाम लेकर आया था। अब अमूस बियाबान में से उस जदीद शानदार शहर में आया था। कोई तअज्जुब की बात नहीं कि पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते ही उसकी छोटी आंखें सुकड़ गईं, जो उसे खुदा ने अता की थी। वो सियाहों की तरह नहीं, खवातीन कह रही थी, इन तमाम खवातीन को देखें जो खरीदारी कर रही हैं, इस नए फैशन को देखें जो इनके दरमियान आया है, या जैसे कुछ मर्द सोचते हैं शहर में बड़े बड़े जुए खाने और बाकी चीजें मौजूद थी, ताकि वो गलियों के चौकों पर बैठकर आती जाती औरतों पर शेवत की नजर डाल सके। लेकिन इस नबी की आंखें उस गुनाह की वजह से सुखड़ गई थी जो इसने शहर में देखा था। उन चीजों की वजह से तंग नहीं हो रहा था जिनकी वो तारीफ कर रहा था, बल्कि ये देखकर परेशान था कि वो खुदा से बहुत दूर हो गए हैं। ये वो लोग थे जिन्हें बुलाया गया और चुना गया था। क्या आपने यहाँ गौर किया है, उसने कहा, मैं तुम लोगों के सिवा किसी और को नहीं जानता, मैंने तुम्हें मिस्र से निकाला था और फिर भी तुम मुझसे दूर हो गए हो। और जब वो नबी एक चरवाहा होते हुए शमाली गांव से यहाँ आया तो खुदावंद का कलाम उसके पास था। उसने शहर को गौर से देखा और अपना पसीना साफ किया। उसके कपड़े फटे हुए थे और शायद उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि एक रात के लिए किराए पर कमरा ले सकता। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके पास एक पैगाम था जो उसके दिल में जल रहा था और उसे जरूर ही उसकी मुनादी करनी थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रूहुल कुद्दस का वो मसा भी था जिसने उसे वहाँ बियाबान में हिलाकर रख दिया था, और उसने दुनिया की चमक दमक से अपनी आंखें बंद कर ली थी। और मसीह के किसी भी मसा शुदा खादम की आंखें दुनियावी चीजों को देखने के लिए अंधी होती हैं। वो उन चीजों को नहीं देखते, वो उनकी तलाश नहीं करते हैं। उनके पास एक ही चीज है कि मसीह उनके सामने है, यही सब कुछ है जो वो देखते हैं। वो किसी चीज से नहीं डरते, मसीह उनके आगे होता है। एक पैगाम किसी भी सूरत में लोगों तक पहुंचाना होता है और कोई चीज उन्हें रोक नहीं पाती है। आप उनको जलाकर भी ये चीज उनमें से नहीं निकाल सकते हैं। आप उन्हें जेल में, कैद में और कहीं भी डाल दें, वो उसमें से दोबारा बाहर निकल आते हैं। यही खुदावंद का मस्सा होता है। जी हाँ, उसने शहर के रूहानी जवाल, शहर की गैर इखलाकी सूरत हाल और रूहानी गिरावट को देखा। मैं सोचता हूँ खुदावंद के कितने खादम होंगे जो यहाँ पहाड़ के ऊपर से गुजर कर गए होंगे और फिनिक्स को देखा होगा। आप यहाँ चमक धमक, धूप और आराम के लिए आते हैं और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ज्यादा अरसा नहीं हुआ पिछली बार जब मैं यहाँ आया था, तो मैं साउथ माउंटेन में था और मेरी बीवी वहाँ पीछे बैठी हुई थी। मैं उससे बात कर रहा था। मैंने कहा, तकरीबन 300 या 400 साल पहले ये वादी एक खूबसूरत जगह थी। इसमें कोई शक नहीं, यहाँ से दरियाए सोल्ट बहता है और बेड़िए और बाकी चीजें होती थी और कैक्टस खिला करते थे। देखें ये कैसे हुआ है, सब कुछ गुनाह का एक ढेर बन गया है। और उसने कहा, अच्छा आपको यहाँ कौन सी चीज लाई है? मैंने कहा, ये वो चीज है जो मुझे यहाँ लाई है। चाहे सारा शहर तारीकी और गुनाह में डूबा हुआ है, फिर भी खुदावंत की कुछ गवाहियाँ मौजूद है। मसीह के जिंदा लोग यहाँ मौजूद है, ठीक है। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने आया हूँ ताकि अंजील की रोशनी को चमका सकूँ। गली के चौक में कुछ पुराने भाई हैं जो कायम हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने अपना पसीना बहाया है, उन्होंने आंसुओं के साथ दुआ की है और उनके दिलों में एक पैगाम मौजूद है। मैं उनके साथ अपना हिस्सा डालने आया हूँ ताकि यीशु मसीह की खालस खुशखबरी की रोशनी फैलाऊं। इस फिनिक्स शहर में, इस अजीम मेट्रोपॉलिटन इलाके में, देखें ये जगह भी शानदार जगह हो सकती थी अगर इंसान बस अपनी कामयाबियों को ही देख ले जो वो हासिल कर चुका है। कैमल बैक माउंटेन, कैवलियर माउंटेन पर खूबसूरत घर बने हुए हैं। जब मैं वहाँ से गुजरा तो 35 साल पहले ये बस एक रेगिस्तान था। हम घोड़ों की पीठ पर बैठकर वहाँ से गुजरते थे और यहाँ साउथ माउंटेन पर गधों और घोड़ों का पीछा करते थे। और अब ये इस अजीम शानदार शहर का एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन इलाका बन चुका है। ये हजारों गुना हजारों में बढ़ता ही जा रहा है, ये फैला हुआ है और अब शहरों के अपने जवाल ने इसे अफरा तफरी में मुब्तला कर दिया है। धुंध आ रही है, यहाँ की नमी उतनी ही खराब है जितनी ओहायो वादी जेफरसन व्हील इंडियाना की खराब है। आप पाशी इंसान हमेशा दुनिया को आलूदा करता है। जब ये इंडियन के पास था तो ये खूबसूरत जगह थी, लेकिन जब सफेद फार्म आदमी आया तो वो अपने गुनाह, शराब नोशी और बद इखलाकी भी साथ ले आया। और उसने जमीनों को आलूदा कर दिया है, यहाँ तक के ये तकरीबन गंदी नाली बन चुकी है। क्या अजीब मंजर है। खुदा एक न एक दिन इसे रूहे जमीन से मिटा डालेगा। वो ऐसे रास्तबाज लोगों को चुन रहा है जो जमीन पर हुकूमत करेंगे, जैसे वो बतौरे बादशाह हुकूमत करता है। वो अब अपनी कौम को अपने नाम के लिए ले रहा है, एक कौम को अपनी बादशाही के लिए। अब इसराइल का ये होशियार जहीन दानिश्वर ग्रुप और इसका अजीम ताकतवर दानिश्वर सदर या बादशाह यरोबाम एक होशियार आदमी था, और क्या वो इस छोटे नाम मालूम नबी की बात सुनेंगे? क्या उस अजीम पैगाम को जो उसके दिल में जल रहा है सुनेंगे? क्या वो गलियों में जाकर मुनादी कर सकेगा और लोग औरतें दोबारा अच्छे लबास पहनना शुरू कर देंगी? क्या मर्द शराब खानों और गुनाह वाली जगहों को छोड़ देंगे? और क्या इस छोटे नामालूम आदमी की मुनादी पर खुदा की तरफ रुजू करेंगे? ये एक सवाल था जो शायद उसके जेहन में आया हो या मेरे जेहन में आया है जब मैं उसे वहाँ खड़े हुए देखता हूँ। और उसका छोटा गंजा सर धूप में चमक रहा था, उसकी सफेद दाढ़ी उसके लिबास पर लटक रही थी। वहाँ से नीचे निगाह करके उसने शहर को देखा, जबकि उसकी आंखें सुखड़ी हुई थी और उसका दिल धड़क रहा था। लेकिन तो भी वहाँ उसने खुदा की बादशाही देखी जो वहाँ कायम होनी चाहिए थी, और वो सब गुनाह के बोझ तले दबे हुए थे। और खुदा की तरफ से मलामत की गई जो बादशाह के लिए और गली में भीख मांगने वाले के लिए भी थी। हर एक काहिन, मुनाद, बादशाह, ताकतवर हुक्मरान, शहंशाह या जो कोई भी था, उसके पास खुदा की तरफ से लानत करने का इख्तियार था, क्योंकि वो, आप सोचेंगे, उन्होंने उसे कबूल कर लिया होगा। हो क्या वो इस बात को समझ पाए थे? याद रखें, उसके पास कोई सिफारिश नहीं थी। वो हमारे आज के मुबशरों से मुख्तलिफ था। उसके पास पादरियों की कोई सिफारिश नहीं थी। उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि वो आदमी कौन है, लेकिन एक ऐसा था जो जानता था कि वो कौन है, और वो वही था जिसने उसे भेजा था। यही उसके लिए मायने रखता था कि उसे किसने भेजा है, और वो जानता था उसे कहां से भेजा गया है। उसका पैगाम बिल्कुल उसी तरह आगे बढ़ना था और कोई फिक्र नहीं थी। जब वो शहर में दाखिल हुआ तो उसके पास कोई तंजीमी असनाद नहीं थी जो उसकी हमायत करती, ताकि वो किसी मिनिस्ट्री के अदारे के पास जाकर कहता, मेरे भाइयों, मैं फलां ग्रोह की तरफ से भेजा गया हूँ, फलां मजहबी ग्रोह से मेरा ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक फलां फलां से है। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, इनमें से कोई भी चीज उसके पास नहीं थी, ना ही उसके पास ये साबित करने के लिए कोई फेलोशिप कार्ड था कि वो एक अच्छी रफाकत से ताल्लुक रखता है। और वो कौन से मुल्क की मिनिस्टर एसोसिएशन से आया है, उसकी मुहिम के लिए कोई भी तावन करने के लिए तैयार नहीं था। उसने कभी किसी से इस बारे में मशवरा भी नहीं किया था। वो छोटा आदमी एक मुश्किल जगह पर खड़ा हुआ था। एक आदमी के लिए बस इतना ही काफी होगा कि वो मुड़कर वापस चला जाए और अपने रेवड़ को दोबारा संभाल ले जहाँ से उसने छोड़ा था, वहाँ से शुरू करें। लेकिन गौर करें, उस आदमी को कभी कोई दूसरा ख्याल नहीं आया। उसने किसी सनद के बारे में नहीं सोचा, किसी फेलोशिप कार्ड के मुतालिक नहीं सोचा। उसने सिर्फ एक ही चीज के मुतालिक सोचा और वो खुदावंत का कलाम था। खुदा ने उसे एक जिम्मेदारी दी थी कि वो उस शहर में जाए और नबुवत करे। ये वो चीज थी जो उसके लिए मायने रखती थी। उसके पास खुदावंत का कलाम था और इसलिए उसने महसूस किया कि उसे इसनाद की जरूरत नहीं है, ना ही उसे किसी सिफारिश या किसी तावन की जरूरत है। उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत थी और वो खुदा की तरफ से तावन था और बस इतना ही काफी था। जब तक वो खुदावंत की मर्जी में रहा, उसे किसी चीज से कोई फर्क ना पड़ा। वो जानता था कि उसका पैगाम खुदा की तरफ से है, खुदा उस पैगाम का दफा करेगा, वो ऐसा ही करेगा। और जब वो पैगाम लेकर आया तो ऐसा लगता था कि वहाँ के तमाम पादरी और मुनाद आ जाएंगे, उस जमाने के नबी आ जाएंगे और वहाँ आकर तोबा कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने जगह की हालत देखी हुई थी और इखलाकी बगाड़ भी देख चुके थे। लेकिन जब उसने खुदावंत के कलाम के साथ नबुवत शुरू की तो वो उनके लिए अजनबी था, उन्हें उसके मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं था। ये आज का एक अजीब मंजर है। खुदावंत का कलाम अजनबी बन चुका है और चर्च को इसके मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं है। जब वो सुनते हैं कि लोग उठकर गैर जुबानों में पैगाम देते हैं और उसका तर्जमा करते हैं और कहते हैं कि फला फला चीज होने वाली है, तो लोग अपना सर फेर कर चले जाते हैं और समझते हैं कि वो पागल हैं। वो देखते हैं कि कोई रूह में उठता है और नबुवत करता है और खुदावंत की तरफ से पैगाम देता है। तो देखें, आज दुनियावी चर्च के लोग समझते हैं कि उस शख्स ने अपना दिमाग खो दिया है। ये उनके लिए अजनबी है, क्योंकि आज वो तकरीबन उसी हालत में है जिसमें उस दिन सामरिया था। लेकिन याद रखें, जब कौमें या खुदा का चर्च मुकम्मल तौर पर इस हालत में चला जाता है, तो खुदा उनके लिए खुदावंत के कलाम के साथ एक नबी खड़ा कर देता है। यकीनन वो बहुत पहले ही इस बात को भूल चुके थे, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए इस बात से कतई नजर कि वो अपनी किताबों के जरिए देख सकते थे और ये देखते कि आया उनके किसी स्कूल से कभी डॉक्टर अमूस नाम का कोई शख्स आया था या नहीं। उन्हें ये मालूम होना चाहिए था कि इब्राहिम का खुदा इन पत्थरों से औलाद पैदा करने की कुदरत रखता है या अपना कलाम लाने के लिए नबियों को खड़ा कर सकता है। और वही खुदा आज की रात भी उतना ही कादिर है जितना वो उस वक्त था। और ये यकीनन लोगों के लिए एक गलत फहमी थी। वो अपने कलाम को लाने के लिए मसा शुदा बंदों को खड़ा कर सकता है, वो एक इंसान में अपना कलाम डाल सकता है, उसे भेज सकता है और साबित कर सकता है कि वो खुदा है। और जो शख्स अपने आप को आजिज करेगा और खुदा के हुजूर झुकेगा और खुदा के कलाम पर ईमान लाने से नहीं डरेगा, वो ऐसा करने के काबिल है और वो यकीनन ऐसा ही करेगा। उसने ऐसा करने का वादा किया था और उसकी बातें यकीनन उस जमाने में उनके लिए शनाख्त शुदा थी, क्योंकि अभी तक वही नस्ल मौजूद थी और जो कुछ अमूस ने पेशनगोई की थी उसे पूरा होना जरूर था। मैं आज सोचता हूँ कि अगर अमूस हमारे पास आता तो क्या होता, आज हम उसे कबूल करते? क्या फीनिक्स अमूस को कबूल करता? अगर यहाँ पहाड़ के इस पार आता या मुल्क के किसी हिस्से में आता एक छोटे कद का फटे पुराने लबास में मलबूस आदमी आता और यहाँ दाखिल होकर मुनादों को हुक्म देता और कहता मेरे पास खुदावन का कलाम है, तो क्या आपको लगता कि हम उसे कबूल कर लेंगे? यकीन नहीं। पहली चीज जो हम उससे पूछेंगे, तेरा ताल्लुक किस ग्रोह से है? और क्या होता अगर वो सामने से जवाब देता और कहता मेरा ताल्लुक आसमानी ग्रोह से है? अफसोस के साथ ये हमारे लिए अजीब बात होगी, लेकिन उस वक्त यही सूरत हाल थी। और अगर आज अमूस मंजर पर आ जाए तो शायद आज भी वैसा ही हो। आए, मैंने जो कुछ कहा है उसे देखते हैं, चंद लम्हों के लिए उसकी मंजर कशी करते हैं और देखते हैं वो क्या करेगा। अब जानते हैं वो क्या करेगा। मेरा ख्याल है कि वो हमारी पूरी तरतीब से इख्तलाफ करेगा। जी हाँ जनाब, वो हमारे तंजीमी अकीदों से इख्तलाफ करेगा। वो मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, कैथोलिक और पेंटिकोस्टल को मुजरिम ठहराएगा। वो पूरे निजाम को अपने हाथों में ले लेगा। वो यकीनन ऐसा ही करेगा। वो उनके तंजीमी अकीदों से इख्तलाफ रखेगा। वो सीधा कलाम की बुनियादी बुनियाद पर जाएगा और कलाम ही से आगाज करेगा। वो अपनी मुहिम का आगाज खुदावंद यूं फरमाता है किस साथ करेगा। क्यों क्यों, क्या आपको लगता है फिनिक्स उसे कबूल करेगा? क्या आपको लगता है लुइसविल उसे कबूल करेगा? न्यूयॉर्क, बोस्टन, मैसाचुसेट्स या जो कोई भी हो, या कैलिफोर्निया कबूल करेगा? नहीं जनाब, वो इस छोटे आदमी को जितनी जल्दी हो सका जेल में डाल देंगे। यकीनन ऐसा ही होगा और वो ऐसा ही करेंगे। अगर वो कलाम पर वापस चला गया तो मुझे यकीन है कि वो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हर ग्रोह उससे इख्तलाफ करेगा। कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो उसके साथ मुत्तफिक होगा, क्योंकि इन्हें इलाही कलाम से इख्तलाफ करने के लिए अपनी रवायात पर कायम रहना है। हमें याद रखना होगा कि वो एक सच्चा नबी है। अगर वो ऐसा है और अगर वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ नबी है, तो उसकी एक निशानी होगी, एक ऐसी निशानी जिससे मालूम होगा कि वो एक नबी है, और वो ये है कि वो कलाम के साथ कायम रहेगा, क्योंकि खुदा का कलाम इसी तरीके से नबियों के पास आता है। आप जानते हैं वो क्या करेगा? वो धमाके करेगा और इस नस्ल को मुजरिम ठहराएगा। वो मुल्क की हर छोटे बालों वाली औरत को मुजरिम ठहराएगा। वो हर तंजीमी मनाद को मुजरिम ठहराएगा। वो यकीनन ऐसा ही करेगा। वो हर सिगरेट नोश को और हर उस औरत को जो निकरे पहनती है या पतलून पहनती है मुजरिम ठहराएगा। वो इन चीजों को फाड़ कर रख देगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें कलाम के खिलाफ हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। क्या आपको लगता है हम उसे कबूल करेंगे? किसी भी हाल में नहीं, ये उसे कबूल नहीं करेंगे। वो चर्च के गैर इखलाकी कामों की मजम्मत करेगा। वो उन मबल्लगों के चेहरों पर वो छोटी सी जुड़ियों वाली उंगली को हिलाएगा और कहेगा तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम अपने आप को खुदा के ममसूख खादम कहते हो, और पुलपट पर खड़े होकर अपनी औरतों को अपने मर्दों के दरमियान सेक्सी लबास पहनने देते हो और बाकी ऐसे काम करने देते हो? क्या तुम अपनी नौजवान बच्चियों की इस तरह परवरिश करोगे? क्या तुम अपने मर्दों को दो या तीन बार शादी करने की इजाजत दोगे और फिर उन्हें चर्च में डीकन का ओहदा दोगे? तुम्हारा मतलब ये है कि तुम उस सन्नत को बरकरार रखोगे जो तुम्हारे हाथ में है और खुदा के कलाम को एक तरफ रख दोगे? ओ मेरे खुदाया, वो इन तमाम चीजों को फाड़ कर रख देगा। जी हाँ जनाब, चर्च की बेहयाई और अराकीन की बेहयाई को वो उड़ा कर रख देगा। मेरे खुदाया, हर एक मेंबर को वो तबाह कर देगा। इंसान की बनाई हुई सेमिनरी के अकीदे को वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब क्या आप ऐसे किसी शख्स को कबूल करेंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। ये लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसे शख्स को जितनी जल्दी हो सकेगा शहर से बाहर निकाल देंगे। देखें, बस अदारा इकट्ठा होकर एक मीटिंग करेगा और कहेगा, हुक्म देगा, हमें इस मामले के मुतालिक कुछ करना चाहिए। अपनी जमात को जाकर बताओ कि इसकी मत सुने। नहीं नहीं, किसी भी सूरत में हम उसे कबूल नहीं करेंगे। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। यकीनन ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसकी बात को सुने हो, मैं ये पसंद करता हूँ। मैं ठीक उस तरफ देख रहा हूँ जो वो कह रहा है। उसने कहा, वही खुदा जिसकी खिदमत करने का तुम दावा करते हो, वही तुम्हें हलाक करेगा। वो आज भी वही बात कहेगा। हम अमेरिकियों ने खुद को बहुत सी शानदार चीजों में लपेट लिया है। बस हमारी तंजीमों में बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी तादाद में लोग हैं, और ये काफी अच्छी मकबूलियत है। और सेमिनरी के पादरी हैं, जिन्हें खामोश रहने और इसके बारे में कुछ ना कहने की तरबियत दी जाती है, क्योंकि वो डरते हैं कि उन्हें चर्च से खारिज कर दिया जाएगा। यकीनन, लेकिन वो इन चीजों के टुकड़े टुकड़े करके रख देगा, क्योंकि ये कलाम के खिलाफ हैं। यकीनन ऐसा ही करेगा। और वही खुदा जिसकी खिदमत करने का हम दावा करते हैं, किसी रोज इस चीज को जलाकर राख कर देगा। वो इसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अगर अमोस आज यहाँ मौजूद होता तो वो अपनी बातें कभी न बदलता, ठीक कलाम के साथ कायम रहता। हो क्या उसे सुने, वो उनसे कह रहा है, खुदा ने तुमसे मोहब्बत की और वो तुम्हें लेकर आया, उसने तुम्हें चनीदा लोग बनाया। मैं उसे एक बार पेंटिकोस्टल चर्च में सुनना चाहूँगा। क्या आपको यकीन है कि वो आमोस है? शायद आप थोड़ी देर के लिए मेरा पीछा छोड़ दें, समझे? जी हाँ, वो उन्हें बताएगा, वो उन्हें मुक्के नहीं मारेगा, वो इस चीज को अपनी पूरी ताकत से धमाके के साथ उड़ा देगा और इन्हें बताएगा कि वो कलाम से पीछे हट गए हैं। वो खुदा जो तुम्हें बरसों पहले इंसान के बनाए हुए घरों से और इंसान के मुर्दा खानों से निकालकर बाहर लाया था, 50 साल पहले तुम्हारे माँ बाप इन निजामों से निकलकर बाहर आए थे, जिन्होंने उन्हें बांधा हुआ था और उन्हें दुनियादारी में रखा हुआ था। और खुदा ने अपनी रहमत नाजिल की और तुम्हें गुनाह और उन चीजों से दूर कर दिया जो कलीसिया में थी, और अब तुम ठीक वापस मुड़ गए हो, जैसे सामरिया ने किया था। देखें, खुदा ने उन्हें जिन मुल्कों से निकाला था वो उन मुल्कों में फौरन वापस मुड़ गए और उन्होंने उनके साथ इत्तेहाद कर लिया। और हमारी आज क्या हालत है? हम बड़ी बड़ी तंजीमों के साथ मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बड़े बड़े स्कूल बना रहे हैं। क्या हमें बड़े स्कूलों की जरूरत नहीं है? ये ठीक बात है, मेरे पास इसके खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हर बार जब आप किसी बानी या रहनुमा को देखते हैं जो अपने दौर में आगे बढ़ता जाता है, खैर वो अपनी जिंदगी में अच्छा काम करना जारी रखेगा, लेकिन जैसे ही वो चला जाएगा वो उसके काम के ऊपर एक तंजीम बनाना शुरू कर देंगे। फिर बहुत से छोटे रिकी और एल्वस उसमें शामिल हो जाएंगे, और पहली चीज आप जानते हैं, वो उस काम को खराब करके अपने मुताबिक बना लेते हैं, और फिर दूसरा आता है और वो कुछ और उसमें शामिल कर देता है, क्योंकि वो हार्वर्ड का कोई अजीम जहीन तालिब इल्म है या कुछ और है। और पहला काम वो कुछ नई बातें शामिल करना शुरू कर देते हैं और पुरानी बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं फलां फलां बात का ये मतलब ये नहीं था। आप दोबारा उसी पुराने चक्कर में वापिस आ जाते हैं। जी हाँ, अगर अमोस यहाँ होता तो वो इस चीज को सीधा जड़ से उखाड़ देता। उसने कभी अपनी मुहिम इस बात पर नहीं बनानी थी कि वो कितने चर्चिस से ताउन हासिल कर सकता है। उसने कभी भी अपनी कलीसिया को किसी मखसूस तंजीम या कलीसिया के बाद फिरका वराना हिस्सों पर कायम नहीं करना था। वो बस एक ही काम करता, वो अपनी मुहिम खुदावन यू फरमाता है पर बनाता। खुदा हमेशा की तरह उसकी मदद करता और साबित करता कि ये दुरुस्त है। वो कहता, मुश्किलात हैं, आपके चर्च में अफरा तफरी है। वो आज क्या कहता जबकि खुदा का कलाम हमारी आंखों के सामने जाहिर किया जा रहा है? वो कहता, दूसरा तमोतियस 3 देखें, जहाँ लिखा हुआ है, डीट घुमंड करने वाले खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोष रखने वाले होंगे, संग दिल तोहमत लगाने वाले बेजब और उन लोगों की तरह हकारत करने वाले होंगे जो ठीक तरीके से जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है एक नबी मंजर पर आकर इस नबुवत को नजरअंदाज कर सकता है? वो कहेगा, ये बात आज के दिन हमारी आंखों के सामने पूरी हुई है। चर्च कितना ज्यादा रस्मी हो जाएगा और ऐसे कामों में बढ़ता जाएगा। वो खुदा की बातें आपको याद दिलाएगा, वो आपको याद दिलाएगा कि खुदा ने इस दिन में क्या करने के लिए कहा था। अगर आमोस मंजर पर सामने आ गया, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि खुदा आमोस के जरिए साबित करेगा जो उसने इस जमाने में करने का वादा किया है। यकीनन वो ऐसा ही करेगा, उसने उस जमाने में भी ऐसा ही किया था, उसने हमेशा ऐसा ही किया है। यकीनन अगर आमोस मंजरे आम पर आ गया तो हम उससे कबूल नहीं करेंगे। अब देखें, दीनदारी की वजह रखने वाले हैं वो यहाँ क्वायरों में और इधर उधर खड़े होने वाले हैं, लंबे लंबे चोगे पहनने वाले हैं, और वो फरिश्तों की तरह गाते हैं और अगली ही रात शयातीन की तरह नाचते हैं। ये ठीक बात है, समझे? ये बिल्कुल सच है। कुछ लोग बड़े लंबे शानदार चोगे पहनकर निकलते हैं और फूलों जैसे नजर आते हैं और किसी फरिश्ता सिफ्त इंसान की तरह नजर आते हैं, लेकिन वो खड़े होते हैं और कलाम का इनकार करते हैं, बिल्कुल जैसे एक शैतानी रूह करती है। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। जाएं और जाकर रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे के मुतालिक बात करें। देखें, वो आपको चर्च से बाहर निकाल देंगे, समझे? क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा ही करना है। लेकिन यही लोग अपने कलीसियाओं में खड़े होते हैं और अपने अराकीन को इजाजत देते हैं ताकि तहखाने में मटक मटक कर रोक एंड रोल करें। और हमारे नाम नहाद YMCA वाले हैं। मैं सोचता हूँ कि इसमें सी का क्या मतलब है। उनके दरमियान जाएं, आप मुश्किल से ही कोई और बात सुन पाएंगे सिवाय खुदावंद के नाम के। क्या ये नौजवानों की कर्सिंग सोसाइटी है? कुछ अर्सा पहले मैं एक होटल में ठहरा हुआ था जो YWCA के सामने था और उन छोटी लड़कियों को वहाँ फर्श पर देखना शर्मनाक बात थी। तकरीबन 9 बजे तक मटक मटक कर नाच रही थी, गोया जैसे अपनी टांगे तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये ठीक बात है। और वो सब चर्च की अराकीन थी, क्वेयर में गाती थी और संडे स्कूल में पढ़ाती थी। ये शैतान के अलावा कुछ नहीं था जो वहाँ फ्लोर पर उन नन्हे बच्चों को सिखा रहा था। ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसे मजहब कहा जाता है। यकीनन एक सच्चा नबी ऐसी चीज को सीधा दोजख के धुएं में वापिस फेंक देगा जहाँ से ये निकली थी। यकीनन ये सच है। आपको क्या लगता है, अगर अमूस यहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अंजील की मुनादी कर रहा होता और उसकी नजर यहाँ कटे हुए बालों वाली खवातीन पर जाती तो क्या वो उन्हें मुजरिम न ठहराता? आपको क्या लगता है, वो यसाया 5 और पहला करंथियों 14 का हवाला ना देता? और हो क्या वो इस बात पर जोर ना देता? यकीनन देता, वो जरूर देता। जब वो सड़कों पर चलती हुई औरतों को ऐसे मुख्तसर कपड़ों में देखता जो मर्दों की तरह दिखाई देती हैं और ऐसे तंग कपड़े पहनती हैं और जिल्द तकरीबन बाहर लटकी होती है, चलते हुए मटक मटक कर ठुमक ठुमक कर इस तरह चलती है और नाज नखरे दिखाती हैं, क्या आपको नहीं लगता खुदा का कोई बंदा पुलपट पर खड़ा होकर इस तरह की चीज को मुजरम नहीं ठहराएगा? जबकि इसका जिक्र पुलपट से बहुत कम किया जाता है और ऐसा पेंटिकोस्टल चर्चेज में भी पाया जाता है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, अमूस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई वो एक ऐसा आदमी होगा जो ये बात कहेगा, वो डरेगा नहीं क्योंकि वो खुदावंद की तरफ से मस्सा किया गया था। और अगर उसके पास खुदावंद यूं फरमाता है तो उसके पास यकीनन खुदावंद का कलाम है। वो सामरिया में आया, उनकी चमक दमक देखने नहीं आया था और ये जानने नहीं आया था कि उनके अदारे कितने हैं और अराकीन कितने हैं। जैसा मैंने गुज़िश्ता रात कहा था, आज ऐसा लगता है कि पूरा चर्च सिर्फ एक ही चीज पर तामीर किया गया है और आज चर्चेज में भाइयों के दरमियान सिर्फ एक ही चीज का चर्चा है और वो तादाद है, अराकीन है। एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तादाद खुदा नंबर नहीं गिनता, वो करदार को गिनता है। करदार वो चीज है जिसे खुदा तलाश करता है, कोई ऐसा आदमी जिस पर वो अपना हाथ रखे, कोई ऐसा आदमी जो उसके साथ हमेशा कायम रहे। जैसे हमने कहा था, फैसले पूरा साल हमने बहुत से फैसले किए थे, ये पत्थर हैं, इकरार करना है। और एक मिस्त्री के बगैर पत्थर का क्या फायदा, जिसके पास खुदा का तराशने वाला कलाम ना हो, जो उसे तराश कर खुदा का बेटा ना बना सके या खुदा की बेटी ना बना सके और उसे कलीसिया में उसकी मुनासिब जगह पर ना रख सके। पत्थरों को इकट्ठा करने से इमारत नहीं बनेगी, आपको उन्हें काटकर शक्ल में लाना पड़ेगा। आज हमें ऐसे मस्साशुदा बंदों की जरूरत है जैसे अमूस था, जो एक औरत से दुनियादारी को काटकर उसे खुदा की बेटी बना दे, एक मर्द में से तमाम दुनियादारी को निकाल दे, चाहे जितने भी ट्रस्टियों ने उसे बाहर निकालकर फेंक दिया हो या कुछ और किया हो, वो खुदावंद यूं फरमाता है पर कायम रहेगा। जी हाँ, मुझे नहीं लगता कि हम अमूस को इस तरह कबूल कर लेंगे। आपको क्या लगता है, अमूस क्या करेगा जब वो आज के पेंटिकोस्टल चर्च में दाखिल होगा, जो चर्च रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में चलने का दावा करता है, और फिर वो उसी चीज को पेंटिकोस्टल चर्च में देखता है, हालांकि ये चर्च रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में चलने का दावा करता है। मैं सोचता हूँ अब हम बैप्टिस्ट के मुतालिक और मेथोडिस्ट और लुथरन के मुतालिक बात कर सकते हैं, लेकिन जब बात हमारे अपने गंदे दरवाजे की हो तो फिर इसका क्या होगा? ये खुदा के कलाम से दूर हो गए हैं, कहीं कुछ गलत हुआ है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, वो आते हैं और तमाम किस्म के मुख्तलिफ काम करते हैं और वो पाकरू की रहनुमाई में चलने का दावा भी करते हैं, रूह में नाचते हैं, कभी कभार गैर जुबाने भी बोलते हैं। मैं गैर जुबाने बोलने पर ईमान रखता हूँ, मैं रूह में नाचने पर ईमान रखता हूँ, मैं नारे लगाने पर ईमान रखता हूँ, लेकिन इसके साथ और भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, आप ये तमाम काम करते हैं और कलाम का इनकार भी करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, आप गलत रूह के कब्जे में हैं। खुदा अपने लोगों की रहनुमाई कभी भी ऐसे कामों की जानिब नहीं करता, नहीं वो ऐसा नहीं करता है। मेरा ख्याल है ये गलत चीजों को निकालने का वक्त है, एक और बोस्टन टी पार्टी का वक्त है। मैं कहता हूँ चर्च को इस चीज की जरूरत है, इसे अच्छी तरह साफ करने की जरूरत है। जब जोन ऑफ आर्क माजी के दिनों में सामने आई तो कैथोलिक चर्च इस बात से ना वाकिफ रहा कि वो एक मुकद्दस थी। जब वो जिंदा थी तो वो रोयाएं देखती थी, ख्वाबों की ताबीर बताती थी। वो रूह से भरी हुई एक खातून थी और खुदा ने उस छोटी खातून को इस्तेमाल किया और उन्हें लगा कि वो कोई जादूगरनी है और उन्होंने उसे जादूगरनी समझकर जला दिया। अब जानते हैं कैथोलिक के पादरियों ने खुद ये काम किया था और कई सौ साल गुजरने के बाद उन्हें ये मालूम हुआ कि वो एक मुकद्दस थी। फिर जब उन्होंने उसे मुकद्दस करार दिया तो पहले उन्होंने तौबा की, बस उन्होंने उन पादरियों की लाशें खोदकर निकाली और दरिया में फेंक दी ताकि तौबा कर सके। अब देखें, ये चीज बिल्कुल उनके सामने से गुजरी और वो इसे देखने में नाकाम हो गए थे। उन्होंने सेंट पैट्रिक और बाकी सबके साथ भी तकरीबन ऐसा ही किया था। कोई हैरत की बात नहीं, यीशु ने कहा था तुम नबियों की कब्रों को सजाते हो और सफेदी फेरते हो और तुमने ही उन्हें वहाँ डाला है। ये सच है। आज हमें एक आमोस की जरूरत है जो हमारे पास खुदावंद का कलाम वापस लाए। यकीनन ऐसा ही है। अब हमारे दावे और चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं जब तक कि खुदा का रूह हमारे दावों की पुष्टपनाही ना करे। अगर हमारी जिंदगियाँ हमारे दावों के मुताबिक नहीं है तो कोई गड़बड़ है। जोन ऑफ आर्क फ्रांस को एक इनकलाबी की तरफ ले गई। उन्हें एक इनकलाबी की जरूरत थी, बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने किया था। उन्हें एक इनकलाबी की जरूरत थी और उसने उनकी इस तक रहनुमाई की, लेकिन इनकलाब के बाद वहाँ एक गलती हुई। इन्हें एक ऐसे इनकलाबी की जरूरत थी जो उन्हें सीधा करे, जो उसे सीधा करे जिसके बारे में वो बगावत कर रहे थे। मैं कहता हूँ पेंटिकोस्टल चर्च सबसे करीब तर चीज है जिसे मैं आज बाइबल में से जानता हूँ। अगर ऐसा न होता तो मैं किसी और में होता। ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं यहाँ खड़े होकर अपना वक्त जाया ना करता, पेंटिकोस्टल लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर मुझे ना लगता कि कोई उम्मीद है। ये दुरुस्त है, पेंटिकोस्ट दुरुस्त है, लेकिन जब हमें इकट्ठा होने के लिए पेंटिकोस्ट की जरूरत हो और हमारी रवायात टूट चुकी हो तो हमें एक मुखालिफ इनकलाब की जरूरत होती है। हमें एक जवाबी तहरीक की जरूरत है। मुझे एक ऐसी तहरीक चाहिए जो पेंटिकोस्टल होने का दावा ना करे बल्कि पेंटिकोस्टल की तरह पाकीज़ा तहरीक हो। खुदा पाक है, जो उसके साथ जिंदगी गुजारते हैं उन्हें पाक जिंदगी गुजारनी चाहिए। वो एक मुकद्दस खुदा है। बाइबल कहती है पाकीज़गी के बगैर कोई भी इंसान खुदावंत को नहीं देखेगा। ये सच है, उसकी जिंदगी पाक है और अगर उसकी जिंदगी आप में है तो वो आपको पाक कर देती है। इसके बगैर आप खुदावंत को नहीं देख सकते हैं। और देखें ये कहाँ बह रही है। हम कुछ वैसे ही हैं जैसे इसराइल उन दिनों में था। इसराइल ने सोचा क्योंकि वो खुशहाल लोग हैं इसलिए सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने अपने जमाने में दूसरे शहरों के साथ इतिहाद कर लिया और उन्होंने उस इतिहाद को कायम रखा। हुकूमत का इतिहाद मुनादों के साथ था, पादरियों के साथ था और नबियों के साथ था और उन्होंने सोचा सब कुछ ठीक है और उन्होंने सोचा इस बात से खुदावंद खुश होगा। लेकिन उनके दरमियान एक छोटा सा आदमी उठ खड़ा हुआ और उन्हें दोबारा वापस ले आया। ये दुरुस्त है, बस वो खुशहाल थे और यही वो मकाम है जहां हम गलती कर जाते हैं। खुशहाली रूहानी बरकत की अलामत नहीं है। ये दुरुस्त है, जरा भी नहीं है। खुशहाली बाज़ औक़ात एक रुकावट होती है। क्या आपको याद है खुदावन ने इसराइल के मुतालिक क्या कहा था? जब तू छोटा था, जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, जब तू मैदान में अपने ही खून में लथपथ पड़ा था, तुझे साफ करने वाला कोई नहीं था, मैंने तुझे पनाह दी, फिर तूने मेरी खिदमत की। लेकिन जब तू बड़ा हो गया और तूने समझा तू ठीक है और खुद कफील हो गया तो तूने मुझे छोड़ दिया। ये लोग हमेशा ऐसा ही करते आए हैं। उज़िया, जैसा कि मैंने चंद दिन पहले बिजनेसमैन के नाश्ते में जिक्र किया था, वो एक अजीम आदमी था उसने खुदावंत को मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन एक दिन जब खुदा ने उसे मजबूत किया तो वो यशायाह नबी के लिए एक अजीम मिसाल बन गया। लेकिन जब वो मजबूत और ताकतवर हो गया तो कौमें उससे खौफ ज़दा होने लगी। उसने अपनी दीवारें तामीर की और शानदार चीजें हासिल करना शुरू की। वो खुद पसंद हो गया, वो ये समझने लग गया कि वो कितना अजीम है। और फिर उसने मुनाद का मकाम संभालने की कोशिश की और खुदा ने उसे कोढ़ में मुब्तला कर दिया और वो कोढ़ से मर गया। देखें, हम कभी भी नहीं चाहते हैं हमारे दिलों में ऐसी बात आए। और कभी कभार जब हम अपनी तंजीमों को तरक्की करते देखते हैं तो हम कहने लग जाते हैं, हम बड़ा ग्रुप है, हम सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल ग्रुप है, हमारे पास बाकी सबसे ज्यादा लोग हैं। या अगर आपका ताल्लुक हमारे ग्रुप से नहीं है तो आप आसमान पर नहीं जा सकते हैं, और वगैरह वगैरह। जब आप इस कैफियत में पहुंच जाते हैं तो आपने खुद को खुदावंद के कलाम से जुदा कर लिया है। ठीक है, याद रखें, कंबल इतना चौड़ा है और आपके भाई के लिए काफी है। ये बिल्कुल ठीक है, उसे अंदर ले आए। हो आज हमें खुदावंद के कलाम की तरफ वापसी की कितनी जरूरत है। देखें, आज और हमारी कौम को वापसी की जरूरत है। इनमें से किसी एक रात मैं मुनादी करने जा रहा हूँ, अगर मैं कर सका तो मैं चाहता हूँ। मेरे पास एक फर्दे जुर्म है, मुझे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक मैं तमाम मुनादों को इकट्ठा ना कर लूँ। जी हाँ, मैं इस नस्ल पर यीशु मसीह के खून का इल्जाम लगाना चाहता हूँ और आपके सामने साबित करना चाहता हूँ, समझे। अब हो सकता है कि मुझे ये मुनादी करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़े, लेकिन हम देखेंगे कि क्या हम किसी खादमों के साथ नाश्ता कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ खुदावंद की मदद से मैं दिखाऊं कि हम कहाँ जा रहे हैं और गलत रास्ते पर हैं। हमें वापिस आना पड़ेगा, वापिस आने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, आज हमारी कौम की तरफ निगाह करें। देखें, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज जो तारीकी के दौर में हुई थी। चर्च और रियासत को एक साथ मुतहद कर दिया गया था। इत्तेहाद को देखें या वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज को देखें, तमाम चर्चेज वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज में दाखिल हो रही है और उन्हें ये लगता है कि ये खुदा की वदानियत है। देखें, तमाम चर्चेस, यूनाइटेड ब्रदरन और चर्च के बुनियादी आदमी इस अजीम बड़ी तंजीम में जा रहे हैं और ये खुदा के कलाम को ना जानने की वजह से हो रहा है। नबी ने फरमाया था कि ये चीज रूनुमा होगी और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी। ओ, क्या आपको लगता है कि अमूस आज रात यहाँ पुलपट पर खड़ा हो सकता है? अगर वो फिनिक्स में होता तो क्या वो इस चीज पर वार करने में नाकाम होता? इसका ये मतलब नहीं वो हमारे या बाकी भाइयों के खिलाफ है, लेकिन वो इस निजाम के खिलाफ होता जो हमें कलाम से दूर ले जा रहा है। यही काम है जो उसने करना था। वो इकट्ठे कैसे चल सकते हैं? बाइबल यहाँ अमूस में फरमाती है, खुदावंद ने कहा है, लोगों को बताओ दो कैसे इकट्ठे चल सकते हैं जब तक वो मुत्तफिक ना हो। अब हम अपने पेंटिकोस्टल ग्रुपों को कैसे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज में लेकर जाएंगे जबकि उनमें से आधे, बल्कि आधे से ज्यादा 85 या 95% कुंवारी की पदैच से इनकार करते हैं। वो इनकार करते हैं। मेरा ख्याल है कि उनमें से 99% लोग इलाही शिफा का इनकार करते हैं। वो बाइबल के असूलों का इनकार करते हैं। वो गैर जुबानों का इनकार करते हैं। वाहिद पेंटिकोस्टल ग्रुप हैं जो इसे कबूल करते हैं। और हम वननेस में उनके साथ कैसे इत्तेहाद करेंगे? हम उनके साथ कैसे एक होंगे? हम उनसे इत्तेफाक किए बगैर उनके साथ कैसे चलेंगे? आप ये कैसे करने जा रहे हैं? आपको अपने अजीम बशारती अकीदे से इनकार करना पड़ेगा जो आपके पास है। उनके साथ चलने के लिए बाइबल के बुनियादी असूलों का इनकार करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, खुदा एक जाती फर्द को बुलाता है। वो आपको एक फर्द के तौर पर अपने कलाम के साथ रहने और उसके साथ चलने के लिए बुला रहा है। खुदा उनके साथ कैसे चल सकता है जबकि उनके अपने अकीदे हैं जो उनकी दुनियावी हिकमत ने बनाए हैं उसके कलाम को रद्द करते हैं। जब कोई तंजीम आदमियों के बनाए हुए अकीदे को इकट्ठे कबूल करती है और कलाम का इनकार करती है तो फिर आपने खुदा को अपने से दूर कर दिया है। खुदा पाक है और खुदा बाइबल कहती है कि वो अपने कलाम की हिफाजत करता है ताकि उसे साबित करे। और वो कलाम को कैसे साबित कर सकता है जबकि कलाम वहाँ मौजूद ही नहीं है? यही वजह है कि हमारे पास बच्चों की बजाय अरकीन है। ये बात है, हमारे पास अकीदा है और हर कोई उसे ले सकता है। दुनिया एक सुपरमैन की तलाश में है, वो इसके लिए काम कर रहे हैं। वो किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें अपने मसीह अकीदे पर कायम रखे और लोग जैसी जिंदगी चाहें वैसी जिंदगी गुजारें। औरतें हॉलीवुड की तरह बर्ताव करना चाहती हैं और फिर भी ये दावा करती हैं कि उन्हें रूहुल कुद्दस मिला हुआ है। मुनाद सबसे बड़ा चर्च बनाना चाहते हैं और बाकी सब कुछ करना चाहते हैं। और ऐसे डीकन हैं जो कई बार शादी कर चुके हैं और वो ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं और अजीब कपड़े पहन सकते हैं। इसे वो खवातीन की आजादी कहते हैं। आपको क्या लगता है अमूस इसके लिए शांत खड़ा रहेगा? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। आपको लगता है कि अमूस खामोश खड़ा रहेगा और वहाँ की दर्जा बंदियों और बिशपों से मुलाकात करेगा और कहेगा, भाइयों, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा काम किया है? वो कहेगा, तुम गुस्ताखों का ग्रोह हो, तुम नकाल हो, तुम ईमान के मुनकर हो। वो वही बात कहेगा जो मिकाया ने उस रोज 400 खुद साफ़ अब्रानी नबियों के सामने कही थी। वो कहते हैं तादाद में एक हजूम होता है और वहाँ महफूज होते हैं। ये इस बात पर मुनसर है कि आप इस कलाम को कहाँ लागू करना चाहते हैं। मैं कह सकता हूँ यहूदा ने खुद को फांसी दी थी और तुम भी जाकर ऐसा ही करो। ये वहाँ लागू नहीं होता है और ये बात यहाँ लागू नहीं होती है कि सलाहकारों की कसरत में सलामती है। इस तरह तो कैथोलिक चर्च में आप सबकी सलामती है। भाई, खुदा के कलाम में सलामती है। बाइबल फरमाती है, खुदावंत का नाम मेरा ऊंचा बुर्ज है, साधक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। और यही वो वाहिद जगह है जिसे मैं जानता हूँ। नबियों ने हमेशा इसी पर ईमान रखा है। जब इब्राहिम वफात पा गया, जब अय्यूब वफात पा गया, तो उसने अपनी कब्र को वादे की सरजमीन में बनवाया। जब इब्राहिम वफात पा गया तो उसने उसी जगह अय्यूब के पास ही जमीन का एक हिस्सा खरीदा था। उसने क्या किया? उसने उस नबी को देखा। वो जानता था कि वो खुदा का खादम है और उसने कहा, मैं जानता हूँ मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। जी हाँ, और इब्राहिम को ये मालूम था। उसने सारा को भी वहीं दफन किया। उसने वहाँ जमीन का टुकड़ा खरीदा हुआ था और वहीं दफन किया। वो खुद भी वहीं दफन हुआ। इजहाक जब वो मुआ तो उसे वापस ले जाकर वहीं दफन किया गया। इजहाक से यकूब आया और यकूब मिस्र में मुआ, लेकिन मरने से पहले उसने अपने नबी बेटे यूसुफ को बुलाया और वो जानता था कि वो एक नबी है, रूहानी आदमी है, ख्वाबों की ताबीर करता है और रोया देखने वाला है। वो हर बार बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। उसने कहा, यूसुफ मेरे नबी बेटे, यहाँ आ, अपना हाथ इस रान पर रख जिसे कादरे मुतली खुदा ने बरसों पहले छुआ था और मेरा नाम धोखेबाज से बदल कर खुदा का शहजादा रख दिया था। अपने हाथ ऊपर उठा और उस खुदा की कसम खा कि तू मुझे यहाँ मिस्र में दफन नहीं करेगा। क्यों क्यों, इससे क्या फर्क पड़ता है? आज वो यही कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम बहुत से लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें गलियों से निकाल कर चर्च में दाखिल कर देते हैं। आप कभी कभी उसे गली में से निकाल कर जहन्नुम का दूना बच्चा बना देते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है, फर्क पड़ता है। यूसुफ ने अपनी वफात से पहले जिक्र किया था, कहा था एक दिन खुदावंद खुदा तुमसे मुलाकात करेगा। वो एक नबी था। उसने कहा खुदावंद खुदा तुमसे मुलाकात करेगा और मेरी हड्डियाँ यहाँ ना छोड़ना बल्कि इन्हें वादे की सरजमीन में ले जाना। क्यों? वो जानता था कि जी उठने का पहला फल वादे की सर जमीन में से निकलेगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है। यीशु जब वो मुआ और ईस्टर की सुबह जी उठा, बाइबल फरमाती है कि बहुत से मुकद्दस लोग जो मिट्टी में सो रहे थे जी उठे और कब्रों से निकलकर बहुत से लोगों को दिखाई दिए। वो कौन थे? इब्राहिम, इजहाक, यकूब, यूसुफ। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ठीक जगह पर थे। यही वजह है मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है। आप मुझे यहाँ किसी मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या किसी और दूसरे चर्च में दफन ना करना। मुझे यीशु में दफन करना जो मसीह में है। खुदा उन्हें अपने साथ ले जाएगा जब वो आएगा। और इससे फर्क पड़ता है, यकीनन पड़ता है। किसी को ये कहने का मौका ना दें क्योंकि आप चर्च में शामिल हो गए हैं। अमूस इस बात को कभी बर्दाश्त ना करता। वो कहता वही खुदा जिसकी तुम खिदमत करते हो। मैं ये खुदावन के नाम में कहता हूँ जिस खुदा की ये कौम नमाइंदगी करती है। वो इस कौम को तबाह कर देगा, वो इन चर्चेस को तबाह कर देगा। आसमान का खुदा अदालत के वसीले अपना गजब नाजिल करेगा और इन चर्चेस को نام نہاد چرچز کو تباہ کر دے گا. یاد رکھیں میری بات مان لیں, چرچ میں کوئی بھی شامل نہیں ہو سکتا. آپ ایک لاج میں شامل ہوتے ہیں, آپ چرچ میں شامل نہیں ہوتے ہیں, آپ چرچ میں پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں آپ میتھوڈسٹ لاج, بیپٹسٹ لاج, کیتھولک لاج, پینتیکوسٹل لاج میں شامل ہوتے ہیں, لیکن آپ زندہ خدا کے چرچ میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی کے پیچھے وہ آ رہا ہے جو اس کی کلیسیا ہے. لہذا ہمارے پاس قیام گاہیں ہیں, چرچز نہیں ہیں. لاج میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے, منافق اور باقی سب بھی. لیکن اب میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا, کلام کے مطابق زندہ خدا کی کلیسیا میں ایک بھی منافق نہیں ہے, وہاں مقدسین کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. اب آپ ممبرشپ لے سکتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آموس اس کی مذمت نہیں کرے گا, وہ اس چیز کو اور اس کی بنیاد تک کو ہلا کر رکھ دے گا. وہ یقیناً ایسا ہی کرے گا. غور کریں, جب اسرائیل اپنی راہ پر وعدے کی سر زمین کی جانب روح القدس کی رہنمائی میں چل رہا تھا اور آگ کا ستون ان کے سامنے تھا اور کوٹی ہوئی چٹان ان کے ساتھ تھی اور موآب باہر نکلا جو کہ ایک بائی تھا. یاد رکھیں وہ بھی اسرائیل کا حصہ تھا, وہ اس یہودی نسل سے تھا کیونکہ وہ لوط کا اپنی بیٹی سے پیدا ہونے والا بچہ تھا, اس سے موآب وجود میں آیا تھا. اور بلام کاہن کو دیکھیں, وہاں سے باہر آیا اور ایک مذبح بنایا اور اسی قسم کی قربانیاں پیش کی, اتنا ہی بنیادی تھا جتنا وہ ہو سکتا تھا. دیکھیں اور اس کے ساتھ ایک مشہور شخصیت بھی تھی, اس کے پاس بادشاہ تھا, اس کے ساتھ تمام بڑے آدمی, شہزادے اور خواجہ سرا کھڑے ہوئے تھے, لیکن موسیٰ کے ساتھ ایک کھڑا ہوا تھا جسے اس نے نہیں دیکھا تھا. وہ وہی تھا جو آموس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور وہ ہر اس شخص کے ساتھ آج رات کھڑا ہوگا جو خدا اور راست بازی کے لیے کھڑا ہوگا, چاہے جتنے بھی طاقتور حکمران یا بادشاہ ہوں. اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کبھی بھی اس چیز پر لانت نہیں کر سکیں گے جسے خدا نے برکت دی ہے. کیوں؟ یہ ایک زندہ بیج ہے, یہ خدا کا کلام ہے, یہ اپنے کمال تک پہنچ جائے گا. ہو کیمپ میں زندہ خدا کے نشان تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ اسرائیل نے وہاں کچھ غلطی کی ہے, لیکن مخالف اس کوٹی ہوئی چٹان کو دیکھنے میں ناکام ہو گئے تھے اور اس کفارے کو بھی جو اسرائیل کے لیے دیا گیا تھا. اور کیمپ میں بادشاہ کی للکار موجود تھی, خدا ان کے ساتھ تھا. دیکھیں وہ بیماروں کو شفا دے رہا تھا, معجزات عجیب اور جلالی کام کر رہا تھا, جبکہ آگ کا ستون ان کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا. موسیٰ آگ کے ستون کی پیروی کر رہا تھا اور بنی اسرائیل موسیٰ کی پیروی کر رہے تھے اور وہ وعدے کی سر زمین کی راہ پر گامزن تھے اور کوئی بھی چیز انہیں روک نہیں سکتی تھی. آمین. ہو کیا یہ آج آسانی سے دہرایا نہیں جا سکتا؟ اگر خدا کسی کو اپنے ہاتھ میں یا اپنی گرفت میں لے لے, آگ کا ستون آج بھی زندہ ہے, وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. کلام آج بھی زندہ ہے. خدا ہمارے لیے آموس کو بھیجے جو حق اور سچ کے لیے کھڑا ہو جائے اور چیزوں کو ہلا کر رکھ دے. آپ کہتے ہیں کیا ہم آپ کے خیال میں اسے کس قسم کے نتائج حاصل ہوں گے؟ ٹھیک ہے, اس کا نتیجہ نکلے گا یہاں تک کہ وہ ان تمام لوگوں کو بلائے گا جنہیں خدا نے پہلے سے مقرر کیا تھا. یہی وہ لوگ ہوں گے جو وہ حاصل کرے گا. جو کچھ باپ نے مجھے دیا ہے وہ سب آ جائے گا. جی ہاں, میکایا اخیب کے سامنے تھا اور اخیب اس سے نفرت کرتا تھا. تمام منسٹری کا گروہ اس کے خلاف تھا اور وہ سب بھی متحرک تھے, لیکن ان کی تحریک کلام کے مطابق نہیں تھی. مجھے لگتا ہے شاید آموس نے بھی یہی بات کہی تھی. جب کاہن باہر سڑک پر نکلے تو کہا, اب ایک منٹ ٹھہرو, کیا مجھے اپنی اسناد دکھاؤ, تم کون سے سکول سے آئے ہو, تم کس نسب سے آئے ہو, کیا تمہیں پادری کس نے بنایا ہے؟ اس نے کہا, خدا نے مجھے بنایا ہے, تمہارا کس سکول سے تعلق ہے؟ یہوہ خدا سے میرے پاس خدا یوں فرماتا ہے, کیا وہ اس کی سنیں گے؟ یقینا نہیں, وہ اس آدمی کو نہیں سننا چاہتے تھے, یقینا نہیں وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے. اور پھر بھی ان میں سے کچھ آدمیوں نے کہا ہوگا, میں متحرک ہوں, خیر میں یہاں فریسیوں کے بڑے چرچ کا رکن ہوں. دیکھیں خدا نے ہمیں کس طرح برکت دی ہے, ہم نے سونے کے مذبح بنوائے ہیں, ہم نے ہیکلوں کو تعمیر کیا ہے, ہم نے یہ تمام چیزیں کی ہیں. اور ہو ہماری مشنری پیشکش تمام یہودیہ کی دوسری تمام کلیسیاں سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ سب چیزیں یہاں کرتے ہیں, ہمارے لوگ دسواں حصہ اور باقی سب کچھ بھی ادا کرتے ہیں, لیکن پھر بھی میکایا یا آموس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا, وہ خدا جس کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اس کی خدمت کر رہے ہو, وہی تمہیں تباہ کر دے گا. اور بالکل ایسا ہی ہوا. اب میں مشنری پروگراموں کی مذمت نہیں کر رہا, میں بڑے چرچز کی مذمت نہیں کر رہا, لیکن مسئلہ یہ ہے कि लोगों ने अपनी नजरें इस पर लगा ली हैं और कलाम से हट गए हैं, और आखिरकार ये चीज आपको सीधा उसी में ले जाती है और आप खुद को फिसलता हुआ पाते हैं। कलाम की तरफ वापिस आ जाएं, इससे दूर ना जाएं। ओ, हमें आज बियाबान में से एक पुकार की जरूरत है। यकीनन अब यही सच्चाई है। यकीनन दूसरी वजूहत, लोग वजह बताते हैं, वो दलील देना चाहते हैं। यही वो पहली चीज है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। यही वो चीज थी जिसकी वजह से इंसानियत की रफाकत टूट गई थी। ये वो वक्त था जब शैतान ने कलाम के खिलाफ दलील का प्रोग्राम मुतारिफ करवाया था, और ये बहुत ज्यादा मंतकी था। आए शैतान को देखते हैं कि उसने हवा को क्या कहा था जब खुदा ने अपने कलाम के वसीला उन्हें हिफाजत में रखा हुआ था। ये वाहिद चीज है जो खुदा ने अपनी कौम को दुश्मन से महफूज रखने के लिए दी है, यानी कलाम। उसने हमें कभी कोई अकीदा नहीं दिया, उसने हमें सिर्फ अपना कलाम दिया है। ये बात है। और खुदा ला महदूद है, कादर मुतलिक, ला तब्दील है। वो बदल नहीं सकता। उसका पहला प्रोग्राम ही कामिल है। उसे कभी कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका पहला फैसला जब इंसान ने गुनाह किया और अपने और खुदा के दरमियान उस अजीम खाई को अबूर कर लिया और अपने लिए वापसी का कोई रास्ता ना छोड़ा, तो रहम और फजल से भरे हुए खुदा ने एक मुतबादिल को कबूल किया। सिर्फ एक खुदा जो रहम और फजल से भरा हुआ हो ऐसा काम कर सकता है। उसने एक मुतबादिल कबूल किया और वो मुतबादिल खून था। यही वो वाहिद जगह है जहाँ इंसान दोबारा खुदा की रफाकत में आ सकता है, यानी बहाए गए खून के नीचे। और कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया जब इंसान खून के सिवा खुदा की रफाकत में दाखिल हो सका हो। और ये सच है, यही खुदा के साथ उसकी रफाकत होती है। अब हवा ने तहफ्फुज को पामाल कर दिया था क्योंकि हवा ने दलील देनी शुरू कर दी थी। शैतान ने कुछ इस तरह कहा, अब तू कुछ नहीं जानती है, तूने अभी तक कोई तालीम हासिल नहीं की है। मैं यहाँ सेमिनरी का प्रोफेसर हूँ, उसकी अपनी थी, और जो मैंने वहाँ सीखा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। हमने सीखा है कि खुदा बहुत अच्छा है। हमने अपनी सेमिनरी में ये सीखा है कि खुदा बहुत बड़ा है। वो आपसे उस सब पर अमल करने की तवक्को नहीं करता जो उसने कलाम में लिखा है। वो इसकी तवक्को नहीं करता है। जी हाँ, लेकिन उसने कहा, खुदावंद खुदा ने ऐसा कहा है। अब अगर वो इसी पर कायम रहती तो एक अच्छी मुनाद बन सकती थी। यही वजह है कि आज उसे ये बनने पर मुजरिम ठहराया जाता है। देखें, उसे इसे दूर रखें। अमोस ने इसके मुतालिक क्या कहा था? काश मैं उसे तकरीबन 5 मिनट सुन सकता और उसका पैगाम रिकॉर्ड कर सकता। मैं इसे सीधा टेप पर रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को सुनने के लिए दे देता। फिर इसके बाद मैं इस बारे में खामोश रह सकता था। गौर करें। जी हाँ जनाब, वो इसकी मसम्मत करता। और गौर करें कि उसने क्या कहा। अब शैतान ने कहा, अब वो ऐसा हवा के साथ नहीं कर सकता था। अब जानते हैं, वो ये काम आदम के साथ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने हवा के साथ ऐसा किया। बस उसने हवा को कहा, अब तू ये जानती है। उसने कहा, तू ये जानती है, यकीनन खुदा भला है जो नुकसान नहीं पहुंचाता। खुदा, तू यकीनन नहीं मरेगी। तू जानती है वो एक भला खुदा है। आजकल हम ये बात बहुत सुनते हैं, वो एक भला खुदा है, लेकिन भला होने के लिए उसे इंसाफ पसंद भी होना चाहिए। यही चीज उसे भला बनाती है। वो बेइंसाफ नहीं है, वो खुदा है। और अब खुदा बहुत भला है और वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। और उसने कहना शुरू कर दिया, तुम होशियार हो जाओगे, तुम्हारे पास तालीम होगी, तुम होशियार और चलाक हो जाओगे, तुम उन चीजों को जानोगे जिन्हें तुम अभी नहीं जानते हो। समझे? उसे सिर्फ एक ही बात जानने की जरूरत थी और वो कलाम था। हमें बैचलर ऑफ आर्ट्स और PhD और LLD और बाकी ऐसी तमाम चीजें हासिल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ खुदा के कलाम को जाने, वो सबसे सादा है जो बच्चा भी पढ़ सकता है और उसे जान सकता है। समझे? लेकिन दलील से उन्हें क्या मिला, उन्हें क्या हासिल हुआ? वो ठीक वहीं टूट गए। और शैतान जानता था कि उसने इंसानी नस्ल को वहीं शिकस्त दे दी है, और तब से वो इन्हें शिकस्त देता आ रहा है। इसी वजह से अमूस मंजर पर आ गया, क्योंकि मकबूलियत और अवामी राय और उम्दा अजीम सदर या बादशाह था और खुशहाली थी। लोग ईसाऊ की तरह गंदी फलियों के लिए अपनी जानें बेच देंगे। मैं तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आप डेमोक्रेट्स ने अपने पदेशी हक को कुछ अरसा पहले बेच दिया था। ये ठीक बात है। और मैं एक रिपब्लिकन नहीं हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ। लेकिन भाई, क्या रुसवाई है और इस तरह वोट डालने के लिए एक खराब मशीन इस्तेमाल की गई है। लेकिन यही वो चीज थी जो अमेरिका चाहता था। इन्हें वो मिल गई है वो अमूमन आपको वही देता है जो आप चाहते हैं। खुदा मुझे अपना कलाम अता फरमा, इसी की मुझे जरूरत है। खुदावंद, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हो दूसरे दलील देते हैं, लेकिन देखें, अमूस दलील नहीं दे सकता था क्योंकि वो एक नबी था, कलाम उसके पास था। नहीं, बिल्कुल आज कलाम की तरह आपको इसकी तर्जमानी करनी होगी। रूहुल कुद्दस को अपनी जिंदगी में इसकी तस्दीक के वसीले इसकी तर्जमानी करने दें। बस यही कुछ कहा गया था। क्या आप जानते हैं, यर्मिया ने हनन्याह नबी से कहा था, उसने कहा जब नबी बोलता है और जो वो बोलता है वैसा ही हो जाता है, तो फिर नबी जान जाते थे कि वो दुरुस्त है। अगर अमूस यहाँ होता आपके ख्याल में, तो वो क्या करता? वो कलाम के साथ ठहरा रहता, वो यही कुछ करता। आप जानते हैं क्या करता? वो हमें बताता, हमें खुदा के असल कलाम की बुनियादी तालीम के साथ कायम रहना है। वो हमें बताता, हम इब्तदाई पेंटिकोस्टल चर्च से बहुत दूर हो गए हैं। वो हम पेंटिकोस्टलों को यही बताता। कहा, अब उनके पास खुद को तैयार करने के लिए तकरीबन 50 साल थे और तुम अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हो। ओ, वो तंजीम परस्त शख्सियत से क्या कहता? भाई हो, अगर वो चर्चिस को इनकी बद इखलाकी की हालत में देखता तो क्या वो इन्हें टुकड़े टुकड़े ना कर देता? क्योंकि इन्होंने चर्च में पैदा होने की बजाय अकीदों को कबूल कर लिया है। खैर भाई बहन, अगर आप इसमें पैदा हुए हैं तो आपका अमल मुख्तलिफ है। आप कलाम के साथ कायम हैं। अगर रूह कुद्दस आप में है तो उसकी परवरिश सिर्फ कलाम से होगी। यीशु ने कहा, इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि कलाम की हर बात से, सिर्फ कलाम के कुछ हिस्से से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुँह से निकलती है। वो एक नबी होते हुए इस चीज को हम में देख सकता था कि अमूस एक नबी था। अब मैं एक मिनट में खत्म करने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मुमकिन हो सके तो ये बातें ज़हन में रख लें। मैं ये कहूँगा और रूहुल कुद्दस इसे पूरा करेगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर अमूस आज रात यहाँ आकर इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता, अगर वो फिनिक्स की गलियों में घूम रहा होता, वो हमें आज हमारे कौमी मामलात में और हमारी कलीसिया के अंदर दुनियादारी को देखता, तो वो बिल्कुल उसी चीज को देखता जो उसने सामरिया में देखी थी। मुकम्मल तौर पर बद इखलाकी की हालत है और खुदा के कलाम से दूर है। उसने एक बहुत बड़े मजहबी ग्रोह को देखा, उनमें से हर एक इसराइली था, लेकिन वो उन्हें एक गैर इखलाकी और बदकारी में देख रहा था। वो उन लोगों को एक समाजी और इखलाकी जवाल में देख रहा था। वो कौम के दरमियान गैर इखलाकी जवाल देख रहा था। उसे कलाम के मुताबिक गैर इखलाकी गिरावट नजर आ रही थी। वो चर्च में जनाकारी देखता तो क्या करता? मेरा मतलब ये नहीं है। जी हाँ, वो दोनों जिस्मानी और रूहानी जनाकारी को देखता। वो यहाँ इंसान के अकायद को इंसान के अकायद के वसीले लेते हुए देखता और कलाम की बजाय इन्हें कबूल करते देखता जो कि खुदा के खिलाफ रूहानी जनाकारी है। मुकाशवा 17 में यही लिखा है कि वो इस कस्बी के गुनाह में शरीक हैं, क्योंकि जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मैं से मतवाले हो गए थे। जी हाँ, हम देखते हैं कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ होगा जब वो इस गैर इखलाकी जवाल को देखेगा। बस अमूस ने कभी भी हुकूमत पर इल्जाम नहीं लगाया था। सुने, अपनी सारी किताब में उसने कभी हुकूमत पर इल्जाम नहीं लगाया था, लेकिन उसने लोगों को ऐसी हुकूमत मुंतखिब करने पर मरूदे इल्जाम ठहराया था। ओ, मैं कर सकता था। क्या आप थक गए हैं? खैर, जरा एक मिनट ठहरें। सुने, अपनी हुकूमत पर इल्जाम ना लगाएं। हुकूमत ऐसी चट्टान पर घर नहीं बना सकती है क्योंकि लोगों ने वोट रेत के लिए दिए हैं। लोग इसे चाहते हैं। और कई बार मैं ऐसी बातें पुलपट से कहता हूँ जबकि मुझे मालूम होता है कि मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं जो कि मुनाद हैं और अच्छे आदमी हैं। मैं इनसे बात करता हूँ और इन्हें एक कोने में ले जाता हूँ, और ये मेरा फर्ज है कि जब मुझे ये बातें मालूम हों तो मैं अपने भाइयों को भी ये बताऊँ। और मैं इनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं भाई ब्रहनम, हम जानते हैं कि आप ठीक है, लेकिन मेरा चर्च भाग जाएगा। देखें देखें, यही वो चीज है जो आप चाहते हैं। देखें, आप नहीं चाहते हैं, ये लोग हैं। अब अगर आप तसव्वुर करें कि मैं यहाँ सड़क पर एक दुकान खोल लूं और सामान बेचूं, तो क्या आज की खवातीन वो पुरानी तर्ज के ऊंचे फीते वाले जूते लेंगी? देखें, शायद उस जूतों के जोड़े में इतना चमड़ा होता था जितना आज कल की पूरी दुकान में भी नहीं होता। लेकिन अगर मैं वो जूते 50 सेंट के भी बेचूं, तो मैं भूखा मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप उन्हें खरीदना नहीं चाहते हैं। अगर मैं आज की खवातीन को पुराने तर्ज की मदर हबर्ड स्कर्ट्स बेचूं, तो क्या आपको लगता है कि वो इन्हें खरीदेंगी? यकीनन नहीं। वो ऐसी चीज पहनना चाहती हैं जिसमें खुद समा जाए, ताकि चिकनी चमड़ी की तरह नजर आए। वो बहुत ज्यादा तंग लिबास पहनना चाहती हैं। गली में चलते हुए तकरीबन 4 या 5 मुख्तलिफ हिस्से बने होते हैं, कभी इधर कभी उधर हिलती है, और पीठ का सारा वजन एक हील की जूती पर डाला होता है, सर बाहर निकला होता है। देखें, मैं ये मजाक के लिए नहीं कह रहा, ये मजाक की जगह नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। मेरी तालीम अच्छी नहीं है, ये वही तरीका है जिससे मैं अपनी बात बना सकता हूँ, समझे? आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। देखें, अब ये सच्चाई है, वो उन कपड़ों को नहीं खरीदेंगी। गुज़िश्ता रोज मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था, जब एक इंडियन खातून मेरे पास आई। मैं उससे हाथ मिलाना चाहता था। ये बाइक ग्रूमर के चर्च में या वहीं कहीं हुआ था। उसने ऐसा लिबास पहना हुआ था जो मेरी माँ पहना करती थी। मैंने सोचा, अच्छा है खातून, खुदा आपके दिल को बरकत दे, और खुदावन ने मेरे पास पहुँचने से पहले ही उसे शिफा दे दी। वो देखें, मैंने सोचा बेहतर है कि मैं खामोश ही रहूं। देखें, बस उस वक्त तक इंतजार करें जब तक मौका ना आ जाए। देखें, ये वहाँ हुआ था। खैर, आप वो कपड़े नहीं बेच सकते हैं। आप शायद वो इंडियन को फरोख्त कर लें, लेकिन ज्यादा तादाद में नहीं बेच सकते हैं। वो भी बाकी सब की तरह तकरीबन डीले पड़ते जा रहे हैं। आपके पास बहुत ज्यादा टेलीविजन के प्रोग्राम हैं, और आपके बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं, और इनमें से कुछ जदीद सफेद फॉर्म स्कूल टीचर अंदर आ रहे हैं, और बाकी सब दूसरी बकवास चीजें हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होता तुम बहुत पहले वहीं सीटिंग बुल और उन जैसे लोगों की तरफ वापस चले जाते। अफ्रीका में जब वहाँ हमारे पास स्याफाम नस्ल थी, अब वो क्या करते हैं? वहाँ जाएं, वो मिशनरी हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और हिसाब किताब कर रहे हैं। जब वो क्यों? वो अपने कबीलों में इखलाकियात के मुतालिक आपसे ज्यादा जानते हैं, जितना आप कभी जान सकते हैं, जितना मसीहत ने उन्हें सिखाया है। ये दुरुस्त है। अगर उन औरतों में से कोई जुलू कबीले की हो, और वो शादी के लिए किसी खास उम्र तक इंतजार करती है और शादी नहीं करती, और किसी ने उसे अपनी बीवी नहीं बनाया है, तो उसे वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि अब वो उस कबीले में मजीद नहीं रह सकती। नहीं जनाब, और जब उसकी शादी होती है तो उसका मुआयना किया जाता है, आया वो कुंवारी है या नहीं, और अगर वो कसूरवार पाई जाती है तो उसे उस मर्द के मुतालिक बताना पड़ता है, और उन दोनों को इकट्ठे मार दिया जाता है। अगर हमारे पास इस किस्म का सेटअप यहाँ होता तो बहुत ज्यादा कत्ल होते, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये बिल्कुल दुरुस्त है। इनके पास मर्द और औरतों को दफनाने के लिए कफन दफन करने वाले कम पड़ जाते, यकीनन। लेकिन बहरहाल तुम मुर्दा हो और ये जानते नहीं हो, बस यही इसका मसला है। देखें, लेकिन अब यही बात है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर आप क्या करते हैं? वो उन्हें वहाँ ले जाते हैं और स्कूल में पढ़ाते हैं। फिर आप उन्हें गली में पाते हैं, उनके यहाँ अपने कबायली गुनाह थे जो उनके साथ थे, लेकिन जब वो यहाँ आए तो सफेद फॉर्म आदमी के गुनाह साथ ले गए, और फिर वो शुरू में जितने जहन्नमी थे उससे 10 गुना ज्यादा जहन्नमी बन गए। उन्हें सिर्फ मसीह की जरूरत है, जहाँ वो हैं वहीं रहें, ठीक है? ऐसा ही हमारे अमेरिकन इंडियन के साथ है। इस कौम में अगर मुझे किसी के लिए अफसोस है तो वो इंडियन है। यकीनन इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं नहीं, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ, लेकिन मैं इनके हक में हूँ। जी हाँ जनाब, अगर खुदावंद मुझे इस तरह के मैदानों से बुला लेता है और मेरा पैगाम का काम खत्म हो जाता है, और वो मुझे फिर भी जिंदा रखता है, तो मैं इंडियन के पास जाऊँगा। जी हाँ जनाब, जी हाँ जनाब, मेरे खुदाया। हम देखते हैं कि आमोस क्या करता अगर उसे बुलाया जाता, तो वो पूरे सिस्टम को मुजरम ठहराता। यकीनन नहीं, हुकूमत एक चट्टान पर तमीर नहीं कर सकती। मेरा ये बयान था, जबकि कौम रेत के हक में वोट दे रही है, आप अपने चर्च को चट्टान पर कैसे तामीर करेंगे? एक मुनाद कैसे पुलपट पर खड़ा होकर चट्टान की मुनादी करेगा और इसे मुकम्मल अंजील के बुनियादी असूलों पर अस्तवार करेगा, क्योंकि उसकी अपनी जमात, उसके कुछ लोग उसे बाहर निकाल देंगे। अब मैं मुनाद को मुजरिम ठहराता हूँ, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं है और ना ही खुदा की रूह है कि वो दरवाजे बंद करके कह सके, किसी और को ले आओ जो ये बातें कर सके। मैं ये नहीं करूँगा, मैं इस काम के लिए ऐसे मुनाद की तारीफ करूँगा। मगर उस जमात पर अफसोस जब खुदा का एक मंसूब बंदा उनके पास कलाम लाने की कोशिश भी करे और फिर भी ये उसके साथ सीधे ना हो, ये दुरुस्त है। वो एक ऐसा चर्च कैसे बनाने जा रहे हैं जिसमें नौ की नौ नेमते काम कर रही हैं और वगैरह वगैरह, और फिर और वो चर्च बिल्कुल भी संजीदा और हयादार जिंदगी बसर ना कर रहा हो और वो अंजील की ABC को सीखना ना चाहता हो, और फिर कहते हैं काश मेरे पास बेहतर मुनाद होता। क्यों? ये आपकी गलती है, ये दुरुस्त है, ये हमारी कौम की, हम अमेरिकियों की गलती है, क्योंकि हम मजहबी आजादी के लिए यहाँ आए थे किस चीज से, और हम सीधे पीछे चले गए हैं और अपने दारुल हुकूमत में वही चीज डाल दी है जिससे आजाद होने के लिए हम यहाँ आए थे। ये कौम पूरी तरह इसराइल जैसी है। वो इसराइली फलस्तीन में आए, वहाँ के बाशिंदों को निकाल दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। सबसे पहले उनके पास कुछ अच्छे मर्द हुक्मरान थे, उनके पास दाऊद, सुलेमान और बाकी अजीम आदमी थे। आखिरकार कुछ अरसे बाद वो मसलसल वोट डालते रहे, जोर देते रहे और मुंतखिब करते रहे, जब तक के वहाँ अखियब ना आ गया जिसने एक बुत प्रस्त से ब्याह किया हुआ था। अब अखियब एक अच्छा आदमी था, उसका वो चीजों को ठीक करना चाहता था, लेकिन उस औरत के चक्कर में कुछ ठीक नहीं कर पाया था। अब मुझे उस आदमी से कोई मसला नहीं है जिसके मुताबिक मैं चंद मिनट पहले बात कर रहा था। वो एक अच्छा आदमी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कस्बी का निजाम है जो उसकी गर्दन को घुमा देती है। यही वो काम है जो वो करने जा रहा है, जितनी आसानी से हो सकता है अंदर दाखिल हो जाता है और पूरे सिस्टम को तबाह करके रख देता है। क्या आपको मालूम है कि हम कहाँ हैं? हमारा कौमी कर्ज बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि हम आधार पर लिए गए पैसों पर उन टैक्सों से अदायगी करेंगे जो हमें आज से 14 साल बाद मिलेंगे। जब ये निजाम टूट जाएगा तो क्या होगा? कैस्ट्रो, यकीनन मैं उसके खिलाफ हूँ, वो कम्युनिस्ट है, ये ठीक बात है, मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया। जब उसने करेंसी बदली तो सोना वापस भेज दिया, उसने बॉन्ड्स खरीद लिए और सोना वापस भेज दिया। हमें ये करना पड़ेगा वरना हम इस एक चीज में फंस कर रह जाएंगे। देखें, कैथोलिक चर्च दुनिया की दौलत का मालिक है, उसके पास पैसा है, उसके पास सोना है ताकि वो हमारे बॉन्ड्स दोबारा खरीद सके। बिल्कुल यही बात है। और क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये विस्की डीलर और तंबाकू डीलर और मुल्क के बड़े लोग नहीं बिकेंगे ताकि अपना सारा कारोबार बचाएं और करेंसी की जालसाजी से महफूज रहें? वो फौरन वापस जाएंगे और कैथोलिक चर्च से वो पैसे ले लेंगे और फिर वो बिक जाएंगे। ठीक है, क्या बाइबल ने पेशनगोई नहीं की? दुनिया की दौलत, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ और ना ही कोई होशियार आदमी हूँ, लेकिन मैं खुदावंत का शुक्र करता हूँ कि मैं उसे जानता हूँ, और ये बात दुरुस्त है। यही वो पड़ी हुई है ठीक इसी मकाम पर। आप इसे देखें, आप नजर रखें और गौर करें, क्या ये ठीक बात नहीं है? बस मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब उसे देखने के लिए जिंदा रहें, और मुझे नहीं लगता हमें ज्यादा देर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप ये कैसे करेंगे? हम चर्च को तामीर कैसे करेंगे? हम एक कौम को कैसे तामीर करेंगे? अब हम इसकी बुनियाद पर एक कौम को कैसे तामीर करेंगे? हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? शायद मेरे लिए बेहतर है कि मैं चुप हो जाऊं और कहीं और चला जाऊं। लेकिन आप जानते हैं मैंने काफी कह दिया है, और आपको मालूम है मैंने किस चीज के मुतालिक बात की है। देखें, आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। देखें, हम क्या चाहते हैं? आप देखें, आप क्या चाहते हैं? बस वही कुछ आपको मिलेगा जो आपकी ख्वाहिश है। आज हमारे टेलीविजन प्रोग्राम बगैर सेंसर के देखे जाते हैं। पहले हमारे बच्चों के लिए ये गलत समझा जाता था, हम इन्हें शहर में नहीं जाने देते थे ताकि सिनेमा घर में जाकर फिल्में ना देखें। लेकिन अब शैतान ने इसे उल्टा कर दिया है और वो चीज टेलीविजन पर ले आया है और उसे हर घर में नसब कर दिया है, और ये बिल्कुल ठीक है। टेलीविजन ठीक चीज है अगर आप ठीक चीज उस पर देखते हैं, यकीनन ऐसा ही है। लेकिन आप क्या करते हैं? ये वक्त के साथ साथ बिगड़ता ही जा रहा है। खुदा के नाम की कसमें खाते हैं, लानते देते हैं, नंगी औरतें गैर इखलाकी इमाल दिखाती हैं, जो इन बच्चों के जहनों में जहर डाल रहे हैं। यहाँ तक हो गया है और हमने बदमाशों और तमाशा करने वालों का एक झुंड तैयार कर दिया है। ये बिल्कुल सच है, आप इसे देख सकते हैं। हमारी पूरी कौम बदमाशों के झुंड में जा रही है। हर कोई लड़का अपनी पतलून पुलों पर लटकाए हुए घूम रहा है और सर पीछे झुका हुआ है, और उसके बाल मिसेस कैनेडी के वाटर हेड हेयर कट की तरह गर्दन तक लटक रहे हैं, और ऐसे गश्त कर रहा है जैसे कोई गुंडा हो, और फिर वो अपने आप को अमरीकी भी कहता है। आप फजल से गिर चुके हैं, तौबा करके खुदा की तरफ वापिस आ जाएं, वरना आप हलाक हो जाएंगे। यही वजह है हम किसी ऐसे को यहाँ लाना चाहते हैं जो हमें कुछ भी करने दे जो हम करना चाहते हैं। ये ठीक है और चर्चिस के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी एक ऐसे पादरी को मुंतखिब करना चाहते हैं, एक ऐसे पास्टर को नहीं जो यहाँ खड़ा होकर अंजील के वार करता रहे, लेकिन वो किसी ऐसे शख्स को चाहते हैं जो उन्हें स्विमिंग सूट पहनकर नहाने दे और अपना बदन दिखाने दे और तय खाने में जुआ खेलने दे और जैसे चाहे वैसे जिंदगी गुजारने दे और बगैर सेंसर के टेलीविजन के प्रोग्राम देखने दे और रेडियो सुनने दे जो कि गंदगी और नपाकी है और चर्च और दुनिया को एक साथ जोड़ दे। हैरत की बात नहीं कि आमोस इस चीज के खिलाफ चीख उठेगा। आपको लगता है कि लोग उसका इस्तकबाल करेंगे जब वो इस चीज के हक में वोट देंगे? अगर पास्टर 20 मिनट से ज्यादा कलाम सुनाता है तो ट्रस्टी बोर्ड उसे कमरे में बुला लेता है और कहता है, पास्टर यहाँ देखें, हम आपको यहाँ ये करने के लिए नहीं लाए हैं। हमारा प्रोग्राम सिर्फ 20 मिनट का होता है, जब ये खत्म हो जाए तो इसे खत्म कर दो। उसे ये करना चाहिए कि वो उन ट्रस्टीज के ग्रो को दरवाजे से बाहर निकाल दे और बाइबल उठाकर सारी रात मुनादी करे जैसे पालूस ने की थी और फिर मुर्दे को जिंदा होता हुआ देखें। ठीक है, उन्होंने उसे इमारत से बाहर निकाल दिया, लेकिन गली का कोना बिल्कुल ठीक जगह थी। खुदा इस काबिल है कि इन पत्थरों से टेलीविजन बगैर सेंसर के तस्वीरें दिखाता है, गंदगी और नजासत को एक नमूना बनाता है। आज हमारे छोटे बच्चों को देखें, हमारी लड़कियों को देखें। वो छोटे बच्चे जब स्कूल से आते हैं जिनकी उम्र 6, 7 या 8 साल से ज्यादा नहीं है और वो सिगरेट जलाते हैं, ऐसा क्यों है? उनसे पहले शायद उनकी माँ ने भी ऐसा किया हो। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर वो उन बच्चों के साथ मुंसलिक है जो ऐसा करते हैं। नजर रखें कि आपके बच्चे किसके साथ खेलते हैं। ये दुरुस्त है यहाँ दूसरों पर भी। कुछ अरसा पहले बीवी जानती है, हम एक मेज पर बैठे हुए थे और मेरे छोटे जोसेफ ने एक लफ्ज कहा जिसे सुनकर एक शराबी मला भी शर्मिंदा हो जाए। मैं घूम गया, मैंने कहा ये क्या है, और माँ तकरीबन बेहोश होने वाली थी। वो छोटा बच्चा मासूम लग रहा था। उसने कहा, डैडी क्या बात है, जबकि उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, ऐसी कोई बात दोबारा कभी मत कहना। उसे नहीं मालूम था कि ये सब क्या था, बाद में मालूम हुआ। स्कूल में बच्चे गंदे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा, हनी ये अब्लीस की तरफ से है। देखें, आप यहाँ हैं, बच्चों पर नजर रखें। ये चीज एक ऐसे मकाम पर पहुँच गई है भाई जहाँ हर कोई एक दूसरे को नुकसान पहुँचा रहा है। ये गुनाहों का एक बहुत बड़ा ढेर है। ओ मेरे खुदाया, टेलीविजन के प्रोग्राम है, गुनाह के शौकीन हैं, लज्जत से मोहब्बत करने वाले हैं। ओ मेरे खुदा, 20 मिनट बाकी हैं, मुझे रात का शो देखना है। देखें, फौरन यहाँ से निकले, मैंने ये कर लिया है। देखें, उन्होंने अपने दीनी फ्राइज अदा कर लिए हैं, वो वहाँ चले गए थे, यही उनके लिए काफी था। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, एक हकीकी मर्द या औरत जो खुदा के रूप से पैदा हुआ है वो घंटों घंटे बैठा रहेगा और खुदा के कलाम से पीता रहेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब ये वहाँ पहुँचता है तो ये जिंदगी को मजबूत बुनियाद फराहम करता है और बदल कर रख देता है। आमीन। जी हाँ, ये हमारे लोगों की ख्वाहिशात है जबकि हमारा पूरा निजाम ही खराब और बसीदा है। यही कुछ हमारे लोग चाहते हैं। आप एक अच्छे आदमी को लें, फर्ज करें एक अच्छा आदमी है, और उसे एक ऐसे खानदान में रख दें जो कि ऐशो इशरत का झुंड है। वो उस आदमी की जिंदगी कुत्ते जैसी बना देंगे। या इसके बरक्स एक अच्छी औरत को लेकर बस एक ऐसे खानदान में रख दें जो उलझा हुआ है। देखें, पूरे खानदान को खुदा के हवाले होना चाहिए। दुआ करना हमारा काम है। जब तक हमारे बच्चे बच नहीं जाते हैं, अपने घर को ठीक तरतीब में रखें। जी हाँ, हम इसराइल की तरह हैं, जिसने अपने दुश्मनों के साथ इत्तेहाद कर लिया था। सबसे पहले वो कलाम से दूर हो गए ताकि वो ऐसा काम कर सके, और ये इस बात का सबूत है कि अमरीका कलाम से कितना दूर हो चुका है। आप जानते हैं, आपको झूठ पर यकीन करने से पहले सच को रद्द करना पड़ता है। ये दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। हवा ने शैतान का झूठ लेने से पहले खुदा के कलाम को रद्द कर दिया था, फिर वो कलाम से दूर हो गए थे। अब भी ऐसा ही है। रोम को गोली चलाए बगैर इक्तदार संभालने दिया गया। वो इन चीजों के मुतालिक खुदा के कलाम को नहीं जानते हैं, और यही इसकी परेशानी है। हमें एक सच्चे नबी के जहूर की जरूरत है जो हमें कलाम की तरफ वापस ले आए। ये बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे साथ एक नबी का वादा किया गया है, हमारे साथ वादा किया गया है। जी हाँ, बेशक मलाकी 4 फरमाता है कि वो ऐसा करेगा, और वो लोगों के ईमान को दोबारा 35 वाल्दों की जानिब बहाल करेगा। आमोस जानता था कि इसराइल के बेदिल आशिक एक दिन उसे तबाह कर देंगे। अब मुझे ये आजजी के साथ कहने दें, वैसे ही आज एक ईमानदार जानता है कि दुनिया यानी अमेरिका के बेदीन आशिक इसे तबाह करने वाले हैं। आप सियासत से मोहब्बत करते हैं, मैं बस एक मिनट के लिए यहाँ रुकूंगा, ये कौम को तबाह कर देगी, और आपका दुनिया के लिए प्यार और कलाम का साथ ना देना और वो करने की कोशिश ना करना जो ठीक है, वो चर्च को तबाह करके रख देगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। चर्च ने उसे छोड़ दिया है, उसके हयात बख्श कलाम को छोड़ दिया है। पूरी दुनिया इसे ठोकर खाती है जैसे ये एक ठोकर खाने वाला पत्थर हो। वो बिल्कुल आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। जी हाँ, अगर अमूस यहाँ होता तो वो पूरे निजाम के खिलाफ चिल्ला उठता। अब इख्तिताम पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आठवीं आयत में है, इसे गौर से सुने। उसने कहा, जब शेर बब्बर गरजता है तो कौन ना डरेगा। जब शेर बब्बर गरजता है, और मैंने शेर का शिकार किया है, शेर जानवरों का बादशाह है। मैं अफ्रीका में उन सहराओं में रात के वक्त लेट जाता था, उन छोटी घास के नीचे या उन कांटेदार झाड़ियों के अंदर चला जाता था। एक शेर गोली चलाने वाली बंदूक के सामने भी कूद पड़ेगा, वो इससे नहीं डरता है, लेकिन कांटे के करीब नहीं जाएगा। आपने इस अफसाने के बारे में सुना होगा, लेकिन ये सच है, एक शेर कांटे के करीब नहीं जाएगा, इसलिए वो कांटों की झोंपड़ियां बनाते हैं और शेर उन पर हमला नहीं करता है, वरना वो सीधा अंदर आ सकता है। बिली और मैं, मुझे याद है कि एक रात मैं वहाँ लेटा हुआ था और उसका बड़ा सा मुंह बिल्कुल मेरे करीब था और उसकी आवाज सुन रहा था, वो मेरे सर के बहुत करीब था, देखें, लेकिन वो करीब नहीं आ सकता था। उसका बड़ा सा पंजा इस तरह का था जिसके साथ वो जमीन पर घूम रहा था, और आप सब कुछ सुन सकते हैं, लगड़ बगड़ की आवाज हंसते हुए और लगड़ बगड़ की आवाज रोते हुए और लगड़ बगड़ की आवाज चिल्लाते हुए भी सुन सकते हैं, और आप लंगूरों की, बंदरों की और जराफों की आवाज भी सुन सकते हैं, और हाथियों की भी, जबकि वो अपनी बड़ी सूंड के साथ वी करते हैं, आप उन्हें मीलों दूर से सुन सकते हैं, और हर किस्म के कीड़े मकोड़े और बंवरे भी अपनी आवाजें निकालते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़े फासले से शेर दाड़ता है तो बंवरे भी शोर मचाना बंद कर देते हैं, वो सुनते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनका बादशाह है, वो सुनते हैं। बाइबल फरमाती है, जब खुदा शेर बब्बर गरजा है कौन न डरेगा, और जब खुदा बोलता है तो हम उसे नबुवत करने से कैसे रोक सकते हैं, हम उस चीज से कैसे बच सकते हैं। जब खुदा बोलता है तो नबी फरमूदा कलाम के साथ पुकार उठता है, और अगर वो खुदा का कलाम है, जब शेर गरजता है तो कीड़े मकोड़े और बाकी सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि उनका बादशाह बोल रहा है। उनमें इतनी समझ, दलेरी और एहतराम है ताकि वो बादशाह की बात सुन सके जब वो बोलता है। बस खुदा अपने कलाम के वसीले बोलता है, और उसकी हर मखलूक को खबरदार रहना चाहिए। वो आखिरी दिनों में बोल रहा है, वो अपने कलाम को पेश कर रहा है, और उसकी बादशाही से तल्लुक रखने वाली हर मखलूक इस बात का ख्याल रखे जो वो कह रहा है। रुक जाएं और चेक करें, वो गरज रहा है, वो अपने शनाख्त शुदा कलाम के वसीले गरज रहा है, वो अपने आप को जाहिर कर रहा है, जबकि वो इन आखिरी दिनों में गरज रहा है। तो हमें खबरदार रहना चाहिए और जान लेना चाहिए कि कुछ होने वाला है, ये जानते हुए कि खुदा तब तक कुछ नहीं करता जब तक के पहले वो गरजता नहीं है। जब वो गरजता है तो उसकी गरज के बाद कुछ होता है, जी हाँ, क्योंकि वो फिर आगे बढ़ रहा होता है। उसने कहा है, क्या शेर किसी वजह के बगैर गरजता है? क्या एक जवान शेर बगैर किसी वजह के गार में से निकलकर गरजता है? देखें, खुदा के पास गरजने की वजह है, क्योंकि वो जानता है कि अदालत करीब आ पहुंची है, और उसका कलाम एक नबी है, वो है, और ये यीशु मसीह की नबूवत है, ये मुकाशफा है। खुदा अपने आप को अपने लिखे हुए कलाम के वसीले आश्कारा कर रहा है, और वो खुद कलाम है, और अब ये उसका कलाम है, इसमें कुछ भी बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता है, बल्कि इसके साथ जीना है और इसे सीधा ही रखना है। हम इसमें कुछ भी बढ़ाने या घटाने की हिम्मत नहीं कर सकते। खुदा अब भी खुदा है, वो गरज रहा है। उसने कहा है जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। वो खा रहे थे, पी रहे थे, शादियां कर रहे थे, ब्याह करवा रहे थे और बेहयाई थी। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था वो खुद जिस्म में जाहिर हो गया था और अपनी शनाख्त इब्राहिम के सामने करवाई थी। कहा वैसा ही इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। इन चीजों को देखें, शाम की रोशनियां चमक रही हैं। हो अगर आज अमोस यहाँ मंजर पर होता तो वो गरजता, वो तमाम निजाम और रसूमात को तबाह करके रख देता और खुदा का कलाम फतह मंद होकर सवारी करता। आए हम दुआ करते हैं। आसमानी बाप, एक बार फिर से बोल। खुदावन अपने रूहुल कुद्दस के वसीले गरज। वो इस जमाने का नबी है, वो इस जमाने का नबी है जो मर्द और ख्वातीन के दिलों में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सच्चाई को बयान कर सके। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो कुछ लोगों को तलाश कर रहा है। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ कि वो आज रात बहुत ज्यादा लोगों को तलाश करे ताकि वो किसी ऐसे को इस्तेमाल कर सके जो आजिज होने के लिए तैयार हो। जब ये कादर मुतली खुदा की गर्ज को सुने तो उसके कलाम के मुताबिक आगे बढ़े, क्योंकि अदालत करीब है। जब शेर गरजता है तो वो आगे बढ़ रहा होता है। हर एक मखलूक जानती है कि उसे छुप जाना चाहिए क्योंकि एक बादशाह चलकर आगे आ रहा है। ऐ खुदा, हमारे पास सिर्फ एक ही हिफाजती इलाका है। जब बादशाहों का बादशाह गरजता है तो वो यीशु मसीह का लहू है। हमारे पास एक हिफाजती जोन है। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ कि तू आज रात दिलों से बात कर और इन्हें बता कि ये मसीह की आमद के साए तले जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि कौमें टूट रही हैं और बाकी चीजें भी चल रही हैं। तो ये क्या है, लेकिन तो भी तेरे नरम रहम में हमने बहुत गुनाह किए हैं। ऐसा लगता है कि तू हमसे मुंह मोड़ लेगा और हमें छोड़ देगा, लेकिन तो भी जैसा अदन में तूने किया था वैसे ही तू बच निकलने का रास्ता बनाएगा। तूने नूह के लिए बच निकलने का रास्ता बनाया, तूने मूसा के लिए और दानियल के लिए और अब्रानी बच्चों के लिए एक रास्ता बनाया था, और तू मुसलसल रास्ता बना रहा है। और वो जो इसे तलाश कर लेते हैं वो खुदा की रोशनी में चलते हैं और उनके पास जिंदगी है, लेकिन वो जो इसे रद्द कर देते हैं उन्हें मुजरिम ठहराकर दूर कर दिया जाता है। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ कि आज रात ऐसा कोई एक भी ना हो जिसे दूर किया जाए। ये लोग खुदा की गर्ज को प्यार से सुने जबकि रूहुल कुद्दस इनके दिलों से बात कर रहा है और कह रहा है ये मैं हूँ, डरो मत, ये मैं हूँ। और हम ये दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ऑल्टर कॉल रोकने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि बिली ने चंद रात पहले दुआया कार्ड तकसीम किए थे या कुछ इसी तरह था जब हम बाई ग्रूमर के वहाँ थे, और मेरा ख्याल है कल रात को भी उसने दिए थे। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया, मुझे नहीं मालूम, शायद वो आज रात दोबारा दे, मुझे नहीं मालूम उसने ऐसा किया है या नहीं। लेकिन आए चंद कार्डों को बुलाते हैं। क्या भाई ग्रूमर यहाँ है? ग्रूमर नहीं, नहीं ग्रूमर, क्या वो यहाँ है? हमने कहाँ से आगाज किया था? पस नंबर, क्या वहाँ हमने नंबर एक से शुरू नहीं किया था? गुज़िश्ता रात हमारे पास दुआया कार्ड नहीं थे, हम बस रूहुल कुद्दस जमायत में से गुजरा था और उसने लोगों को बुला लिया था। क्या आप ये पसंद करते हैं? मैं भी पसंद करता हूँ। और इस तरह सख्ती से मुनादी करना, मैं थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस कर रहा हूँ। जब मैं लोगों को दुआया कार्ड देता हूँ तो फिर मैं उनके लिए दुआ करने का पाबंद हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास दिलों का परखना नहीं होता तो ये दुरुस्त है, लेकिन मैं उस शख्स पर दुआ करने का पाबंद हूँ। मेरा बेटा दुआया कार्ड तकसीम करता है तो मुझे उस शख्स के लिए दुआ करनी है, ये बात है। खैर, मैं इस तरह महसूस करता हूँ खुदा की मदद के वसीले मैं ऐसा करूँगा। इससे पहले कि मैं इस मुल्क से जाऊं, मैं ये करूंगा। अब हम ज्यादा देर नहीं लगा सकते, आए देखते हैं। हमने शायद एक से लेकर 25 तक, मेरा ख्याल है उस रात लिया था। जी हाँ, एक से लेकर 25 तक। मैं भाई ग्रूमर, क्या आप यहाँ हैं? भाई ग्रूमर, मैंने इसे ठीक नहीं पुकारा लेकिन मुझे लगता है ये ठीक है। एक, खैर आए कहीं और से शुरू करते हैं। आए इसे 75 से शुरू करके फिर 100 तक लेकर जाते हैं। दुआया कार्ड 75 किसके पास है? अपने हाथ बुलंद करें, आए देखते हैं। खैर ये ठीक है, ये अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ आए खातून, 75 74 70, बस 75, अब 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86, 87, 88 से 100 तक, इन्हें यहाँ आने दें। बिली पोल कहाँ है? माफी चाहता हूँ, ठीक है, इन्हें वहाँ इकट्ठा करें। इंतजामिया के लोग दुआया कतार में शामिल होने के लिए इनकी मदद करें। अब आप बाकी लोग मेरी तरफ एक मिनट के लिए देखें। जी, क्या आप उससे प्यार करते हैं? आए नरमी और मिठास के साथ एक मिनट के लिए गाते हैं, जबकि इंतजामिया के भाई वहाँ जा रहे हैं। हो शुक्रिया, उन्होंने इन्हें वहाँ पहुँचा दिया है, बस वो ताकि कतारें मिक्स ना हो। मैं इन लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ, फिर कल हो सकता है हम ऐसे ही बीमारों के लिए दुआ करें, और यूं ही चलता रहेगा जब तक कन्वेंशन शुरू ना हो जाए, और मैं शायद भाई रॉबर्ट्स के वहाँ भी एक दुआया कतार ली जाए, वहाँ उनकी इबादत है। मैं सोच रहा था कि हम दोनों को एक साथ लें, एक एक तरफ से और दूसरी दूसरी तरफ से, लेकिन मुझे नहीं मालूम आया वो इसे पसंद करेंगे या नहीं। मैंने उससे अभी तक बात नहीं की, बेहतर है कि मैं पहले उससे बात कर लूं। आप देखें, भाई ओरल बहुत अच्छे भाई हैं और मसीह के हकीकी खादम हैं, और वो ऐसा करने में खुशी महसूस करेंगे, लेकिन मुझे इस तरह के आदमी के साथ अपने आप को जोड़ना पसंद नहीं है। आप देखें, इसलिए बेहतर है कि मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं। खैर, अगर वो मुझे बताए या मुझसे पूछे, भाई ब्रहनम आए मेरी मदद करें, तो मैं ऐसा करने में खुशी महसूस करूंगा। लेकिन देखें, वो एक बहुत ही आजिज और प्यारे भाई हैं, और अगर वो मुझसे ऐसा करने के लिए कहेंगे तो यकीनन मैं ये करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो पहले मुझसे बात करें। देखें, बेहतर है मैं इसके मुतालिक कुछ ना कहूं। अब आप उसके साथ इसका जिक्र ना करें, उसे मुझसे पूछने दें, फिर मुझे ये मालूम हो जाएगा कि ये ठीक है, समझे। लेकिन अब हम देखते हैं कितनों के लिए हम दुआ कर सकते हैं। खैर, अब आए देखते हैं इमारत में कितनों के पास दुआया कार्ड है। हाथों को बुलंद करें। ओ, ये थोड़े ज्यादा हैं, शायद 50 और भी हैं, 40 या 50 और हैं शायद। ओ जी हाँ, शायद 30 और हैं, ठीक है, अब हम इन्हें लेंगे। बस अब हम इनके लिए दुआ करेंगे। अब आप अपने कार्ड को पकड़े रखें, अगर आपको बुलाया नहीं गया। देखें, अब 10:10 हो चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप सुबह के संडे स्कूल में आएं, और कल शायद दो इबादत हों, और उनमें हम कोशिश करेंगे कि तमाम कार्डों को हासिल करें जो हमारे पास हैं, और फिर हम पीर को नए सिरे से आगाज करेंगे। हम पीर की रात को कहाँ होंगे? ओ, हम वहाँ ट्यूसान में होंगे। अब ट्यूसान आना मत भूले, क्योंकि वहाँ कन्वेंशन का इंतजाम किया गया है। क्या कोई यहाँ ट्यूसान से है? जी हाँ, यकीनन दुनिया के बागीचों का बेहतरीन मकाम है। आप वहाँ से हैं। इन्हीं दिनों में से किसी एक दिन बाई कॉल विलियम्स मुझे पकड़ लेंगे। जब मैं पहले यहाँ आया था तो ये हरीफ शहर थे, और मैं देख सकता हूँ ये अभी भी हैं। मैं इसका आदी हूँ। हमारी बॉल बेसबॉल या बास्केटबॉल की टीम घर पर और उनके हरीफ शहर जेफरसन व्हील और न्यू अल्बानी में है। ओ मेरे 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 खुदाया, कभी कोई ऐसी रात नहीं होती है जिसमें लड़ाई झगड़ों का एक बड़ा ग्रुप ना हो। जब उनके दरमियान कोई गेम होती है, फिर मुझे समझ नहीं आती वो कब खत्म होगी। मुझे मालूम है कि ट्यूसान में वो मुसलसल इसी में मसरूफ रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है फिनिक्स ने ट्यूसान को कई बार पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि मैं ट्यूसान मुझे नहीं लगता कि फिनिक्स का एक तहाई साइज है। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ कुछ अच्छे मुकद्दसीन लोग मौजूद हैं। मुझे यकीन है दुनिया के हर कोने में जहाँ भी मैं गया हूँ, हत्ता के अफ्रीका के घने जंगलों में भी, मैं वहाँ भी मुकद्दसीन को तलाश कर लेता हूँ। ओ मेरे खुदाया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक रात यहाँ अपनी बीवी को लेकर आता और उसे एक गीत गाने के लिए कहता। वो मशरिक और मगरिब से आते हैं, दूर दूर के देशों से आते हैं। अब अगर मैं ये कहूँगा तो वो उठकर बाहर चली जाएंगी, लिहाजा वो भाई रोज से बहुत ज्यादा खौफजदा है। भाई रोज ने कहा, सिस्टर ब्रैनम यहाँ है, हम उन्हें यहाँ ऊपर बुलाएंगे ताकि वो कुछ कह सकें। उसने कहा, मेरा दिल तकरीबन 15 बार जोर जोर से धड़क उठा था। कहा, मैंने अपने सर को नीचे कर लिया था। कहा, बिल अगर वो किसी मीटिंग में होंगे, कहा, तो मैं छुप जाऊंगी। वो यकीनन बहुत शर्मिली है। बस जब मैं घर पहुंचता हूं तो मुझे ये सुनना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब नौजवान, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो यहाँ पर है, आप जानते हैं, जो उसे जानते हैं उन्हें मालूम है। मुझे उम्मीद है कि इस इमारत का हर नौजवान जब अपनी बीवी से शादी करे तो वो उसके लिए इतनी ही प्यारी हो, और आप एक दूसरे के साथ खुश रहें जैसे मैं और मेरी बीवी इन बरसों में रहे हैं। अगर कोई क्रेडिट ब्रैनम फैमिली को मिलना चाहिए तो वो मेरी बीवी को मिलना चाहिए। वो मलका है, वो यकीनन है। एक और बात, वो एक हकीकी माँ है, और फिर देखें कि उसे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, समझे। और फिर देखें, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दिन और रात लोगों का हजूम दरवाजे पर लगा रहता है और वो मेरे और अवाम के दरमियान खड़ी रहती है। देखें, ये सब कुछ घर में होता है, इसलिए ये काफी मुश्किल काम है। और बिली पॉल छोटा सा था, मैं इसके मुतालिक बहुत मर्तबा सोचता हूँ। इसकी माँ की वफात के बाद मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता था, जबकि ये छोटा बच्चा था। डॉक्टर अडेर कहते थे, तुम एक अजीब आदमी हो, और मैं उसे अपनी गोद में उठाकर गली में जाता था और वो अपनी माँ के लिए रोता रहता था। और सर्दी में आप जानते हैं, मैं उसे कुछ इस तरह उठा लेता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसका उसके लिए एक अच्छी बोतल ले सकता। मैंने उसके लिए कोक की बोतल रखी थी जिस पर निपल लगा हुआ था। मैं उसे यहाँ बाजू के नीचे दबाए रखता था ताकि वो गर्म रहे। वो बहुत ज्यादा रोता था तो मैं उसके पास पहुँच जाता था ताकि निपल उसके मुंह में डाल सकूं और थोड़ी देर के लिए उसे दूध पिला सकूं, और बोतल वापस रख लेता था और दूध मेरे ऊपर गिर जाता था, और वगैरह वगैरह, आप जानते हैं। मैं उसे पकड़कर घूमता रहता था, आप जानते हैं, उसे साथ रखता था। रात में मेरे खुदाया, मैं कितनी कोशिश करता था कि वो झूले में सो जाए, और किसी को बुलाता था कि वो उसका ख्याल रखे ताकि मैं किसी बीमार के लिए जाकर दुआ कर सकूं। हम इकट्ठे बहुत दूर तक आ गए हैं, उम्मीद है वो इसी तरह जारी रखेगा। मैंने उसे कल उसके छोटे बेटे के साथ देखा था और सोचा था, बिली, कुछ अरसा पहले तुम भी ऐसे ही हुआ करते थे। खैर, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना है और रास्ते से हट जाएं ताकि दूसरों को मौका मिल सके। खुदावन का नाम मुबारक हो। शेर बब्बर गर्जा है, देखें, कौन ना डरेगा, और खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। क्या ये ठीक है? यही कुछ अकलमंद आदमी ने कहा था, खुदावन का खौफ। अब मैं आप लोगों को उस दुआया कतार में देखना चाहता हूँ, वो सब जिन्हें मालूम है मैं आपके मुतालिक कुछ नहीं जानता हूँ, अपने हाथों को बुलंद करें। हर एक आसमान का अच्छा खुदावन मेरा जज है। जहाँ तक मैं अपनी जिंदगी में जानता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में इनमें से एक को भी नहीं देखा। शायद आप जो जमायत में बैठे हैं, आप लोगों ने देखा हो। अब जमायत में कितने हैं जिन्हें ये मालूम है कि मैं आपके मुतालिक एक बात भी नहीं जानता। लेकिन बहरहाल, आप बीमार हैं और आप खुदा पर ईमान रखते हैं कि अगर आप उसकी पोशाक के किनारे को छू लें तो खुदा मुझसे बात करेगा ताकि मैं आपको बुलाऊं, जैसे उसने उस खातून के साथ किया था। वो हकीकी औरत थी। हो मेरे खुदाया, कोई हैरत नहीं। मैंने बहुत लंबा कलाम सुनाया है। एक ऐसी जमायत जिसके पास ईमान हो वही इतना सुन सकती है। यहाँ एक खातून है। अब ये खातून है, हम आज रात एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, और अब वो यहाँ खड़ी हुई है। बेशक हो सकता है ये बीमार हो या इसे कोई और मसला हो। देखें, खुदा बीमारों को शिफा देने के अलावा और काम भी करता है, आप जानते हैं। और बस उसने हमारी तमाम जरूरियात पूरी करने का वादा किया है। हमारी जरूरियात कभी भी हमारी ख्वाहिशात नहीं है, बल्कि हमारी जरूरियात हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप सुने, जब आप घर जाएं, या अगर आपने पहले ये कभी नहीं पढ़ा है तो यूहन्ना 4 को पढ़ें, और अब देखें, अब यहाँ, अब मुझे याद नहीं है, मुझे ये कहने दें, मुझे यकीन है इस खिदमत में या तो वो मुझे घर ले जाएगा या इसे आगे बढ़ाएगा। अब ये ठीक आखिरी वक्त है, या मुझे वो कहीं बैरून मुल्क भेज देगा जहाँ उन्होंने कभी ये नहीं सुना है। देखें, लेकिन कुछ तो होने जा रहा है, आप इसे याद रखें। अब सुने, मैं टेप फरोख्त करने वाला नहीं हूँ, लेकिन यहाँ एक अच्छा भाई है जो इन टेपों का जिम्मेदार है, और वो मिस्टर मैग्वायर है। मेरा ख्याल है वो जेम्स मैग्वायर है, और इसके सुसर भाई सोथमैन है, जो वहाँ पीछे हैं, यही इन टेपों को देखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अगर आप में से किसी के पास टेप रिकॉर्डर है, मैं इसके मुतालिक अब कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं इसके मुतालिक कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर आप कभी इनसे टेप खरीदें, तो ये टेप लेना, साहिबो, ये कौन सा वक्त है, इस टेप को सुने, साहिबो, ये कौन सा वक्त है, इसे दुआ के साथ सुने, और फिर आप मेरे लिए दुआ करना शुरू कर देंगे। देखें, जब आप, क्योंकि आप देख लेंगे कि मैं आज रात किस मुश्किल में खड़ा हुआ हूँ। मैं एक मुश्किल सूरत हाल में हूँ। काश आप जानते कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक यहाँ, देखें। लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। एक फतेह कभी हार नहीं मानता, और जो हार मान ले वो कभी जीत नहीं सकता। ये बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे अपनी मुनादी पर अमल करना है। देखें, अब मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ। मैं ठीक इस वक्त उस पर ईमान रखता हूँ। अब ये एक बुनियाद है। अब अगर मैं यहाँ खुदावन यीशु की जगह खड़ा होता और ये औरत बीमार होती, तो आप जानते हैं कि खुदावन यीशु होते हुए मैं इसे शिफा नहीं दे सकता था। मैं ये नहीं कर पाता क्योंकि मैंने ये काम पहले ही कर दिया है। अब कितने लोग जानते हैं कि ये सच्चाई है? देखें, यकीनन उसने पहले ही हर गुनाह को माफ कर दिया है। उसने पहले ही हर एक बीमार को शिफा बख्श दी है। उसने पहले ही कलवरी पर लहू बहा दिया है। कीमत को पहले ही चुका दिया गया है। कीमत पूरी तरह अदा हो चुकी है। लेकिन एक चीज है जो आपको करनी है, वो इसे कबूल करना है। ईमान रखकर इसे कबूल करना है। और आप तब तक इसे कबूल नहीं कर सकते जब तक आप इस पर ईमान ना रखें। देखें, अंजील पर ईमान रखें। अब क्या होता अगर वो यहाँ इस सूट को पहने हुए खड़ा होता, जो भाई और बहन विलियम्स के वसीले अच्छे खुदावन ने मुझे लेकर दिया था, ये 5 या 6 साल पहले लेकर दिया था, और अगर वो इसी सूट के साथ यहाँ खड़ा होता, ये सूट पहना होता और ये औरत यहाँ खड़ी होती, अब अगर उसके हाथ में सुराख होता और वो कहता, देख मैं मसीहा हूँ, मैं क्या तू इन जख्मों को देख सकती है? मेरी पेशानी की तरफ देख। अब कोई भी झूठा ऐसा कर सकता है, ये दुरुस्त है। इस तरह उसे पहचान नहीं पाएंगे। और अगर वो यहाँ इस तरह खड़ा होता तो मुझे मालूम हो जाता कि ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, क्योंकि जब वो आएगा तो नरसिंगा फूका जाएगा। हम वो कभी जमीन पर नहीं आएगा, हम आसमान पर उठा लिए जाएंगे ताकि उससे मुलाकात कर सकें। देखें, हम उसे बादलों में मिलेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे उनके साथ बादलों में उठाए जाएंगे ताकि खुदावंत का इस्तकबाल करें। वो कभी जमीन पर नहीं आएगा, हम उसे बादलों में मिलेंगे। लेकिन अब उसने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वो ये कैसे हो सकता है? अपनी जिंदगी के वसीले, और अगर उसकी जिंदगी मुझ में है तो मैं उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। फिर अगर ऐसा होता तो ये वही जिंदगी होती जो उसमें थी, ये वही काम करती जो उसने किए थे। अब यहाँ एक मर्द और एक औरत है, बिल्कुल यूहन्ना 4 की तरह। उसकी मुलाकात एक खातून से हुई, उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, ना ही खातून ने उसे कभी देखा था, और वो वहाँ इकट्ठे खड़े हुए थे, और उसने उस खातून को बताया कि उसका मसला क्या है। और जब उसने ऐसा किया तो खातून ने कहा, जनाब मुझे लगता है कि आप एक नबी हैं। उसने कहा, लेकिन हम जानते हैं जब मसीहा आएगा, जब वो आएगा जो मसीह कहलाता है, जिसका मतलब है मसाशुदा, जब वो आएगा तो वो ये तमाम काम करेगा और इन तमाम चीजों के मुतालिक बताएगा। और उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुझसे बात कर रहा है। अब अगर वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, सिर्फ जिस्मानी बदन, वो हमारे बदनों को इस्तेमाल करता है, वो अंगूर की ताक है, हम उसकी डालियाँ हैं, फिर वो रूह बिल्कुल वैसे ही अमल करेगा जैसे उसने उसमें होते हुए अमल किया था। क्या ये दुरुस्त है? क्या इससे आप ईमान लाएंगे? तो कहें आमीन अगर ऐसा होता है। अब खातून, मैं आपको नहीं जानता, ना ही अपनी जिंदगी में आपको देखा है, जहाँ तक मुझे मालूम है। बेशक आपने शायद मुझे किसी सड़क पर या किसी इबादत में या किसी जगह देखा हो, लेकिन ये हमारी पहली मुलाकात है। अब आपको शिफा की जरूरत है। खैर, मैं अगर मैं ऐसा कर सकता तो किसी भी तरीके से मैं ये करता, और अगर ये माली मामलात होते तो शायद मैं इसमें आपकी मदद करता। और अगर आप कहती हैं शायद कोई और है, तो आप कहेंगी, भाई ब्रैनम, मैं यहाँ आई हूँ ताकि आप मेरे बेटे के लिए या मेरी बेटी या मेरी बहन या डैडी के लिए दुआ करें या किसी और के लिए, तो मैं ऐसा करता। देखें, जो भी मैं कर पाता मैं करता। और अगर आपको घरेलू मुश्किलात का सामना होता तो मैं कहता, मैं आपसे और आपके शोहर से इकट्ठे मिलना चाहता हूँ और किसी और जगह पर आपसे बात करूँगा, आप देखें, ताकि मैं आप दोनों से बात कर सकता और मालूम करता कि गलती कहाँ पर है। फिर जब रूहुल कुद्दस मुझ पर जाहिर करता तो कहता, जरा एक मिनट, तूने फलां काम फलां वक्त पर किया था, तो ये तय हो जाता, आप इससे इनकार नहीं कर पाते। देखें, कहता, तूने ये काम फलां मकाम पर किया था, फिर ये तय हो जाता, आप गौर करें। अब फिर आप वहाँ से आगाज करते। देखें, इसी तरीके से ये किया जाता है। अब आप जानती हैं कि मैं आपसे किसी मकसद के तहत बात कर रहा हूँ, मैं कलाम सुना रहा हूँ, देखें, और फिर मैं खुद को एक खास मसा में लेकर जा रहा हूँ। आप गौर करें और देखें, रूहुल कुद्दस मुझ पर नाजिल होगा और इलाही नेमत के वसीले काम करेगा, और जब दोनों शौर मिल जाते हैं तो खुदा का फजल मुझ पर हो जाता है ताकि रोयाओं को देखूं और देखूं क्या हो रहा है, क्या होगा और क्या हो चुका है। आप जानती हैं ये सच है या नहीं है। आप यहाँ कम से कम 500 लोगों के सामने खड़ी हुई हैं, देखें बहरहाल तकरीबन 300 लोगों के सामने हैं, देखें और आप इस बात को जानती हैं, आप जानती हैं कि ये सच है या नहीं है। और अगर ये सच है तो फिर ये खुदा है। बाइबल फरमाती है अगर तुम में कोई रूहानी या कोई नबी हो और जो कुछ वो कहे वो पूरा हो जाए तो फिर उसकी सुनना। देखें अब अगर वो पूरा नहीं होता तो उसकी मत सुनना। अब मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि ये खतून किस लिए यहाँ आई है, लेकिन अब रूहुल कुद्दस को आने दें और देखते हैं क्या वो नहीं बताता। देखें और अगर बिल्कुल वही काम ना हो जो हमारे खुदावन ने किया था, अगर वो यहाँ खड़ा होता तो वो ठीक ऐसे ही करता। इसलिए याद रखें ये वो है, ये वही है, ये मैं नहीं हूँ। मैं इस खतून को नहीं जानता, मैं इकरार कर रहा हूँ कि मैं इसे नहीं जानता, इसलिए ये काम उससे ही करना पड़ेगा। अब यकीनन इस खतून की रूह में एक शानदार एहसास है, इसलिए नहीं क्योंकि इसने हाथ बुलंद किए हुए हैं। आप सब इबादत में जाते रहते हैं और वहाँ लोगों को हाथ बुलंद करते देखते रहते हैं और वो इस तरह करते हैं और फिर रूहुल कुद्दस पुकारता है और बताता है कि वो कौन है। देखें ये दुरुस्त है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप उन्हें शोर मचाते और चिल्लाते हुए सुन सकते हैं और फिर वहाँ ठीक वहीं पर आप उन्हें बताते हैं कि तुम फलां शख्स की बीवी के साथ रह रहे हो, इस चीज को ठीक यहाँ पर देखा है और वगैरह वगैरह। खैर तुम जानते हो आप इबादत में रहे हैं और देखा है कि चीजें कैसे होती हैं, आपने इन चीजों को देखा है, इस चीज का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये खातून अपनी रूह के लिए एक शानदार एहसास महसूस कर रही है। अब ये खातून किसी खराबी का शिकार है, मैं इसे देख रहा हूँ कि ये कैसे खा रही है। ये मेरे सामने एक मेज पर बैठी हुई है और किसी किस्म का परहेजी खाना खा रही है, वो एक अजीब सी गजा है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्या ये सच है? तो फिर अपना हाथ बुलंद करें ताकि लोग इसे देखें। देखें मैंने इस खतून को अपने सामने कुछ करते हुए देखा है, ये जो कुछ भी है ये टेपर है, देखें ये ठीक है। अब ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप जान लें ये एक अच्छी इंसान है। अब एक लम्हे के लिए गौर करें, अब रूह मसा कर रहा है, अब हर कोई मुकम्मल एहतराम करे, दुआ करते हैं, दुआ में रहें क्योंकि मैंने उसे जमात से गुजरते हुए देखा है, समझे? अब मुकम्मल एहतराम करें। खातून को दोबारा देखते हैं, इससे बात करते हैं, जो कुछ भी उसने आपको बताया है, जी हाँ वो यहाँ है, ये एक मेज पर है, ये आपके मैदे की तकलीफ है और मैदे में किसी किस्म का इन्फेक्शन या कुछ और है। एक डॉक्टर ने इसका मुआयना किया है और कहा है कि इस मसले को लंबा अरसा हो गया है और एक बार इसे कहा गया था कि अल्सर बढ़ रहा है और अब उसने कहा है ये क्या है, छोटी आंत का पहला हिस्सा, छोटी आंत का पहला हिस्सा, छोटी आंत का पहला हिस्सा है। मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ, देखें ये सच है, ये बिल्कुल सच है, आपका नाम मिस मैक्रॉ है, ये सच है। अब जाएं और अपने पूरे दिल से ईमान रखें। क्या आप ईमान रखती हैं? इस तरह के रोने के बाद आप जो पीछे बैठे हुए हैं जनाब, आपके फेफड़ों के साथ जो मसला था वो अब काफी बेहतर हो जाना चाहिए था। अगर आप यकीन करें सब कुछ ठीक हो गया है, ठीक है ये हो गया है, आमीन। इस शख्स ने किसको छुआ है? भाई वहाँ उन दो भाइयों के पीछे आपकी नसें सख्त हो चुकी हैं। बहरहाल आप ईमान रखें जनाब, इस भाई ने किस चीज को छुआ है? क्या आप उस रोशनी को अपने ऊपर ठहरा हुआ नहीं देख सकते? वहाँ उस अंबर रोशनी को देखें। मैं शख्स को नहीं जानता, ना ही अपनी जिंदगी में कभी इसे देखा है, बस खुदावंद यीशु पर ईमान रखें। अब यहाँ कहीं एक छोटा बच्चा है, एक नन्ही बच्ची है जिसकी गर्दन टेढ़ी है, वो वहाँ है, मैं उसे नहीं जानता। बहन ईमान रखें, उस बच्ची की गर्दन सीधी हो जाएगी अगर आप ईमान रखेंगे। इस बहन ने किस चीज को छुआ है। हालेलुया। गर्दन के मुतालिक कोई और भी है, मैं इसे देख सकता हूँ। ये एक औरत है, मैं इसे देख नहीं पा रहा। जी हाँ, वो वहाँ बैठी हुई रो रही है। मिसेज रैली, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें, आपकी गर्दन ठीक हो जाएगी। ईमान रखें, मैं इस औरत को नहीं जानता, मैंने इसे कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वह चीज जो आपको करनी है वो यीशु मसीह पर ईमान रखना है। क्या आप इस पर ईमान रखती हैं? फक्त ईमान रखें। जनाब, मैं आपको नहीं जानता, जहाँ तक मुझे मालूम है हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। क्या आप ईमान रखते हैं? यीशु मसीह मुझे आपकी परेशानी बता सकता है। आप जानते हैं ये सच होगा या नहीं? क्या आप नहीं जानते? अगर आप अपने पूरे दिल से ईमान रखें, ये जमायत की तरफ बढ़ रहा है। क्या आप ईमान रखते हैं कि आपकी बीवी जो वहाँ है वो भी ठीक हो जाएगी? ये आंख का मसला है, आपकी बीवी को आंख की तकलीफ है, क्या ये ठीक है? आपका ताल्लुक यहाँ से नहीं है। नहीं, आप किसी ऐसी जगह से हैं जहाँ बहुत ज्यादा पानी है। ये साहिली शहर है, ये कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस है। मिस्टर बोमन, ठीक होकर वापिस जाए, और यीशु मसीह ने आपको ठीक कर दिया है। क्या आप ईमान रखते हैं? अब आप अगर आप ईमान रखें तो आप में से हर एक शिफा पा सकता है। क्या आप ये ईमान रखते हैं? आप जो दुआया कतार में हैं, आपका क्या ख्याल है? क्या आप ईमान रखते हैं? आप सिर्फ ईमान रखें और शक ना करें। एक मिनट के लिए अपने पूरे दिल से ईमान रखें। ये खातून जिसके पास मैं रुक गया हूँ, ये बहुत ही संगीन हालत में मुब्तला है। अगर इस औरत के लिए कुछ किया ना गया तो ये बहुत जल्द मर जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर साया है। क्या आप इस पर काले साए को देख सकते हैं? कहते हैं आपको मालूम है, हम लोगों ने इस मौत के साया को कैमरे की तस्वीर में देखा था, बिल्कुल खुदावंद के फरिश्ते की तरह था। हमारे चर्च में तस्वीर लटकी हुई है, एक बहुत बड़ी स्यानुमा चीज है, तूफान की तरह, जो एक खातून के ऊपर लटकी हुई है। उन्होंने उससे कहा था इसकी तस्वीर मत लेना, लेकिन पाकरू ने कहा फौरन ले लो, और उन्होंने तस्वीर बना ली थी। और ये वहाँ थी, देखे दोनों तरफ यहाँ है, ये ठीक वहाँ लटकी हुई है। आप लोग जो टेबरनेकल से ताल्लुक रखते हैं, आप में से कुछ यहाँ मौजूद हैं, भाई फ्रेड और बाकी लोग हैं, ये वही चीज है जो इस औरत के ऊपर लटकी हुई है। इसे मसाने का कैंसर है, ये सच है, ये सच है। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो अपना हाथ उठाएं, समझे? अब अंधेरा बिना कुछ कहे चला गया है। देखें, बस इसके ईमान ने ये किया है। ईमान रखें और जाएं। आमीन, आमीन। शक न करें, जाएं और पूरे दिल से ईमान रखें। दिल की तकलीफ बहुत से लोगों को जान से मार देती है, लेकिन ये आपको नहीं मारेगी अगर आप ईमान रखेंगे। आमीन कहते हुए जाएं। खुदावन तेरा शुक्र हो, जाएं और ठीक हो जाएं। ये सच है। अब्लीस चाहता है कि आपको सारी जिंदगी ये गठिया की बीमारी लगी रहे, लेकिन अगर आप पूरे दिल से ईमान रखेंगे तो यीशु मसीह आपको ठीक कर देगा। क्या आप ईमान रखते हैं? तो अपने रास्ते पर खुदा का शुक्र करते हुए जाएं। क्या आप पूरे दिल से ईमान रखते हैं? जाएं और शाम का खाना खाएं और पेट की तकलीफ आपको छोड़ देगी। जाएं और कहें खुदावंद की तारीफ हो। जाएं, उस पर पूरे दिल से ईमान रखें। आपको भी पेट की तकलीफ थी, अपने पूरे दिल से ईमान रखें और जाएं, और यीशु मसीह आपको ठीक कर देगा। ये दुरुस्त है। आप किस चीज से इतने डरे हुए हैं? आप घबराहट में मुब्तला हैं। आपको हार मानने पर मजबूर कर दिया गया है, बस शैतान आपसे झूठ बोल रहा है, लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो गया है। क्या आप मेरा यकीन करते हैं? जाएं और कहें खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद यीशु, मैं दुआ करता हूँ कि तू हमारी बहन को शिफा देगा और इसे यीशु नाम में चंगा कर देगा। आमीन। बहन, ईमान रखते हुए आए, यीशु मसीह के नाम में मैं शिफा के लिए अपना हाथ आप पर रखता हूँ। मेरे भाई यहाँ आए, यीशु मसीह के नाम में मैं शिफा के लिए अपना हाथ आपकी जानब बढ़ाता हूँ। आमीन। कितने लोगों के पास ईमान रखने वाला दिल है, एक ऐसे हाथ के नीचे है जो उठाया जाएगा। अब अपना हाथ अपने पास खड़े हुए किसी शख्स के ऊपर रखें। आप कहते हैं क्या आमोस ऐसा कहेगा? वो यकीनन ऐसा ही कहेगा। ये खुदावंद का कलाम है। ईमान रखते हुए अपने हाथ को बुलंद करें। यीशु ने कहा ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। अगर वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, ये नहीं कहा कि वो उनके लिए दुआ करेंगे, कहा है वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, सिर्फ हाथ ही रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। आए हम दुआ करते हैं। खुदावन यीशु बादशाह अपनी आवाज के साथ गर्जा है। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। खुदावन खुदा हर एक शैतान चला उठे, हर एक बीमारी दूर हो जाए। होने दे, अबलीस शिकस्त खाए और खुदा के बच्चे आज रात इस इमारत में से यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत और फतह के साथ जाएं। ईमान रखें, ये दुरुस्त है, ठीक इसके साथ ठहरे रहें, बोलें, बस अपना हाथ किसी के ऊपर रखें और कहें, खुदावन इन्हें शिफा दे। मैं दुआ करना चाहता हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए दुआ करना चाहता हूँ। आप भी मेरी तरह मसीही हैं, हम सब क्रिश्चियन हैं। अब आप किसी के लिए दुआ करें जबकि वो आपके लिए दुआ कर रही हैं। अब आप कैसे चाहेंगे कि कोई आपके लिए दुआ करे? आप भी उनके लिए वैसे ही दुआ करें जैसे आप चाहते हैं कि वो आपके लिए करें। तुम दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। संजीदगी से दुआ करें बिल्कुल वैसे जैसे आप चाहते हैं कि वो आपके लिए दुआ करें। और ईमान की दुआ बीमारों को शिफा देगी, खुदा उन्हें उठा खड़ा करेगा। और अगर उनके दरमियान कोई बेएतकादी होगी तो ये उनसे निकाल दी जाएगी। क्यों? शेर बब्बर गरजा है, कौन नबूवत ना करेगा? जब बादशाह गरजता है तो कौन नबूवत ना करेगा? उसका कलाम फरमाता है कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। भाई फुलर आए, खुदा आपको बरकत दे।